دیکھیے بھائی آگے سبق شرح میں دیکھیے. قوله اجزاء العلوم كل علم من العلوم المدونه لا بد فيه من امور ثلاثه احدها ما يبحث عن خصائصه والاثار المطلوبه عنه اي يرجع جميع ابحاث العلم اليه وهو الموضوع وتلك الاثار هي الاعراض الذاتيه. گزشتہ سبق میں کتاب کا آخری حصہ خاتمہ جو ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا جس میں مصنف نے اجزاء علوم آپ کو بتلائے. مصنف نے آپ کو بتلایا کہ علوم کے اجزاء جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں، موضوعات، مبادی اور مسائل. موضوعات وہ چیزیں جن کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم کے اندر بحث کی جائے، اور یہاں جمع لے کر آئے تاکہ یہ شامل ہو جائے اس علم کے موضوع کو بھی، اور اس علم کے جو مسائل کے موضوعات ہیں، مسائل کن کا نام قضایا، تو ان قضایا کے جو موضوعات ہیں تاکہ ان کو بھی یہ شامل ہو جائے. اور یا موضوعات سے مراد ہے ما یستق علیہ موضوع العلم، وہ چیز جس پر موضوع علم صادق آئے. جیسے منطق کا موضوع کیا؟ معرف اور حجت، یعنی وہ معلوم تصورات ہیں اور معلوم تصدیقات. تو معلوم تصورات دیکھو یہ بھی جمع، معلوم تصدیقات دیکھو یہ بھی جمع. تو وہ تمام معلوم تصورات جو ہمیں پہنچانے والے ہیں مجہول تصورات تک، تو وہ منطق کا موضوع ہیں. اسی طرح وہ تمام معلوم تصدیقات جو ہمیں پہنچانے والی ہیں مجہول تصدیق تک، وہ بھی منطق کا موضوع ہیں. تو اس اعتبار سے جمع لے کر آئے. تو کسی علم کا موضوع وہ چیزیں جن کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عوارض دو قسم پر ہیں، کچھ عوارض ذاتیہ کہلاتے ہیں اور کچھ عوارض غریبہ. عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں بلا واسطہ اس کی ذات کے اعتبار سے، اور ان کو عارض اولی بھی کہتے ہیں، یا یوں کہیں ان کو عارض بذات اور عارض اولی بھی کہتے ہیں. بھائی عارض اولی اور عارض بذات یعنی اس چیز کی ذات کو لاحق ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. عارض اولی کا معنی بھی یہی کہ اولاً اس چیز کو عارض ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. تو وہ عوارض جو بذات کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں ان کو عوارض اولیہ بھی کہتے ہیں. بھائی تو عوارض ذاتیہ میں یہ عوارض اولیہ بھی داخل ہے، اور اسی طرح وہ عوارض جو کسی امر مساوی کے ذریعے کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. اور امر مساوی جو ہے وہ داخل بھی ہو سکتا ہے، یعنی جز بھی ہو سکتا ہے اس شے کا، اور اسے خارج بھی ہو سکتا ہے. جیسے زہق انسان کو لاحق ہے کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے، اور تعجب کیا ہے؟ انسان کی حقیقت سے خارج. اور کبھی وہ امر مساوی جز ہوتا ہے، جیسے نطق لاحق ہے انسان کو کس کے واسطے سے؟ ناطق کے واسطے سے، اور ناطق جو امر مساوی ہے وہ انسان کا جز ہے. بھائی تو عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو کسی چیز کو بذات لاحق ہوتے ہیں یا کسی امر مساوی کے واسطے سے، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ عوارض غریبہ ہیں. اور عوارض غریبہ ان کی پھر چار صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ عارض ہوں گے جز عام کے ذریعے، یا خارج عام کے ذریعے، یا اخص کے ذریعے، یا مباین کے ذریعے. عام میں دو صورتیں بنتی ہیں، وہ عام یا جز ہوگا یا خارج، جبکہ اخص اور مباین میں ایک ایک صورت ہے. تو یہ چار صورتیں بن گئی. تو جز عام کے واسطے سے عارض لاحق ہو، جیسے حرکت بالارادہ انسان کو لاحق ہوتی ہے حیوان کے واسطے سے، اور حیوان جو ہے وہ انسان کا جز ہے اور جز عام ہے، یہ صرف انسان میں نہیں ہے باقی حیوانات میں بھی یہ جز موجود ہے. اور کبھی وہ عام جو ہے وہ حقیقت سے اور ماہیت سے خارج ہوتا ہے، جیسے ابیض کو حرکت لاحق ہو. تو ابیض متحرک ہے لیکن کس واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے، اور یہ جسم ابیض کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے. اور کبھی وہ جو واسطہ ہوتا ہے وہ اخص ہوتا ہے، جیسے نطق یا زہق عارض ہوتا ہے حیوان کو بواسطہ انسان کے، اور انسان اخص ہے حیوان کے مقابلے میں. اور کبھی وہ واسطہ جو ہوتا ہے وہ مباین ہوتا ہے، جیسے حرارت لاحق ہوتی ہے پانی کو، اور واسطہ آگ ہے، اور آگ اور پانی ایک دوسرے کے مباین ہیں، یہ کہیں بھی جمع نہیں ہوتے کہ ایک ہی چیز کو آگ اور پانی کہا جائے. جو آگ ہے وہ پانی نہیں، اور جو پانی ہے وہ آگ نہیں. तो बात चल रही थी किसी इलम के मौजूआत की, वो चीजें जिनके आवारिज़े जातिया से किसी इलम में बहस की जाए, और मबादी इन्होंने बतलाया कि मबादी दो चीजें हैं, या तो वह तसव्वुरात हैं या तस्दीकात। तसव्वुरात हों तो उनको मबादी तसव्वुरिया कहते हैं, और तस्दीकात हों तो उनको मबादी तस्दीकिया कहते हैं। तो मबादी जो है वह मबादी तसव्वुरिया भी हो सकते हैं और मबादी तस्दीकिया भी। मबादी तसव्वुरिया क्या है, इन्होंने आपको बतलाया था इन मौजूआत की तारीफ, और अगर ये मुरक्कब हों, इनके अज्जा हों, तो इनके अज्जा की तारीफ, और इसी तरह इनके आवारिज़े जातिया की जो तारीफ है वो मबादी तसव्वुरिया में दाखिल हैं, क्योंकि मुआरिफ हैं, वो सब मुआरिफ हैं, और मुआरिफ और तारीफ किसकी कबील से है, तसव्वुर की कबील से। और दूसरे कुछ मुकद्दमात हैं भाई, जो बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी हो सकते हैं, जिन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, यानी उस इलम के दलाइल उनसे मुरक्कब होते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज जो है वो मसाइल हैं, और मसाइल कुछ ऐसे कजियों का नाम है जो उस इलम में मतलूब होते हैं, यानी मकसूद भी जात होते हैं, दलाइल के जरिए उनको साबित किया जाता है, और उन्हीं कजाया, उन्हीं मसाइल की खातिर, उन्हीं बातों की खातिर वो इलम और फन पढ़ा और पढ़ाया जाता है उन्हीं फवाइद की वजह से। तो ये मसाइल कजियों का नाम है, और कजिए के अंदर एक मौजू होता है और एक महमूल। तो ये जो मसाइल हैं, कजाया हैं, इनके मौजूआत क्या होंगे, महमूलात क्या होंगे, वो भी इन्होंने आपको बतलाया कि इन मसाइल के जो मौजूआत हैं वो इस इलम का मौजू, वही इनका भी मौजू हो सकता है, या इस इलम के मौजू की कोई नौ वो इन कजियों का मौजू बन सकती है, या इस इलम के मौजू की कोई आरज़े जाती जो है वो इन कजियों का मौजू बन सकती है, या इसी तरह वो मौजू मुरक्कब होगा इस इलम के मौजू और उसकी किसी आरज़े जाती से, या उस इलम के मौजू की कोई नौ और उसके आरज़े जाती से वो मुरक्कब होगा। और महमूलात जो है, इन्होंने बतलाया था कि महमूलात जो हैं इन कजियों के, वो इन मौजूआत के आवारिज़े जातिया होंगे। क्या होंगे? इन मौजूआत के आवारिज़े जातिया होंगे। और फिर वहां पर इन्होंने लिजवातिहा की कैद लगाई थी, तो इस पर इश्काल होता था कि इससे तो वो सिर्फ आवारिज आ गए जो बिज़ात किसी चीज को लाहिक होते हैं, हालांकि आवारिज़े जातिया तो उसमें तो बिज़ात जो लाहिक होते हैं वो भी दाखिल हैं, और जो अमरे मुसावी के जरिए लाहिक होते हैं वो भी दाखिल हैं, तो तारीफ से तो वो दाखिल नहीं हो रही भाई। तो बतलाया था कि उलमा फरमाते हैं कि लिजवातिहा के बाद लिमा युसावीहा की कैद का भी एतबार करना पड़ेगा, या इसी लिजवातिहा के अंदर बाज उलमा तावील करते हैं और वो कहते हैं लिजवातिहा से मुराद क्या है, लिस्तेदादिन मखसूसतिन बिजवातिहा, कि उनकी जातों में मखसूस इस्तेदाद की वजह से ये आवारिज उनको लाहिक होते हैं, और मखसूस इस्तेदाद की वजह से जो आवारिज लाहिक होते हैं वो सब आवारिज जातियां हैं, उसमें अरज अव्वली भी दाखिल और अरज बमरे मुसावी भी इसमें दाखिल हो जाती है। तो ये जो मबादी की तारीफ की, ये तो उस इलम के अंदर दाखिल है भाई, क्योंकि इलम के मसाइल का समझना इन पर मौकूफ है भाई। बात समझ में आ गई, इलम के मसाइल का समझना इन पर मौकूफ है, तो ये इलम के अंदर दाखिल। जबकि फिर मबादी की एक और तारीफ की जो अल्लामा इब्ने हाजिब ने की है साहिब काफिया ने, वो फरमाते हैं कि मबादी वो इब्तिदाई बातें जो किसी इलम के शुरू में जिक्र की जाएं, जो भी इब्तिदाई बातें किसी इलम के आगाज में किताब के शुरू में जिक्र की जाएं वो क्या हैं, मबादी हैं भाई। और वो मबादी वो तो जो भी बातें जिक्र की जाएं, तो उसमें ऐसी बातें भी जिक्र हो सकती हैं जो हो सकता है इस इलम के अंदर दाखिल हों और हो सकता है इस इलम में दाखिल ना हो, अलबत्ता उनके समझने से आगे इलम का समझना आसान हो जाता है और उसका शौक पैदा हो जाता है। अब आगे देखिए भाई शरा के अंदर, अब यही जो मतन में हमने तफसील पढ़ी उसी की अब शरा करेंगे। قوله أجزاء العلوم كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور ثلاثة, हर वो इलम जो उलूम मुदव्वना में से हो जरूरी है उसमें तीन चीजों का होना। उलूम मुदव्वना मैंने बतलाया था वो उलूम जिनकी तदवीन की गई हो, तदवीन का माना है जमा करना, यानी वो उलूम जो किताबी सूरत में जमा किए गए हैं, वो उलूम जो किताबी सूरत में जमा किए गए हैं और उनको कलमबंद किया गया है, उनमें तीन उमूर का, तीन चीजों का होना जरूरी है। अहदुहा मा युबहसु अन खसाइसिही वल आसारिल मतलूबति अनहु, एक वो चीज जिसके खुसूसियात यानी जिसके अहवाल के बारे में बहस की जाए, वल आसारिल मतलूबति अनहु और वो नताइज जो उनसे मतलूब होते हैं, वो नताइज और फवाइद जो उनसे मतलूब होते हैं। तीन चीजें होनी चाहिए हर इलम के अंदर भाई, कौन सी? एक तो वो चीज जिसकी खुसूसियात और उससे मतलूबा नताइज, उससे हासिल होने वाले फायदे और नतीजे, उनके बारे में बहस की जाती है उस इलम के अंदर। एक तो वो चीज है और वो क्या है? उस इलम का मौजू है जिसके खास अहवाल, खुसूसियात से क्या मुराद? खास अहवाल, जिसके खास अहवाल और उसके उससे हासिल होने वाले नताइज यानी फवाइद और समरात जो हैं उनके बारे में बहस की जाती है उस इलम के अंदर। तो कहते हैं अहदुहा मा, उनमें से एक तो वो चीज है, युबहसु अन खसाइसिही के बहस की जाती है उसकी खुसूसियात के बारे में, वल आसारिल मतलूबति अनहु और उन नताइज के बारे में जो उस चीज से मतलूब होते हैं, उस चीज की खुसूसियात और उस चीज से मतलूबा नताइज के बारे में बहस की जाती है वो चीज। तो अय्यर जो जमी और अब हासिल इल्म इलैही, हासिल कलाम ये यानी लौटती हैं तमाम अबहास इलम उस चीज की तरफ, उसी के अहवाल और उसी के फवाइद और समरात की से क्या की जाती है? बहस की जाती है, यानी इलम की सारी बहसें उसी चीज की तरफ लौटती हैं। अब माना समझ में आया? तो एक तो वो चीज है जिसके खास अहवाल से और उससे जो नताइज मतलूब होते हैं उनके बारे में बहस की जाती है, अय्यर जो जमी और अब हासिल इल्मी इलैही यानी इलम की तमाम बहसें उसी की तरफ लौटती हैं, वह हुल मौजू और वो उस इलम का मौजू है, वह तिलकल आसार हुयल आराज उस जातीयतु और ये जो आसार हैं और ये जो नताइज हैं ये उसके आराज जातिया ही हैं, ये क्या है? उस चीज के आराज जातिया ही हैं। असान अल कजाया, दूसरी चीज जो जरूरी है, अल कजाया लती यकाउफीहा हादल बहसु, वो कजिये जिनके अंदर ये बहस होती है, जिनमें खसूसियात और आसार की बहस होती है वो कजिये, वही अल मसाइलू और ये मसाइल ही हैं, वही तकून नजरियतन फिल अगलबी वक़द तकून बदीहियातिन मोहताजतन इला तंबीहिन, और ये नजरी होते हैं, ये मसाइल क्या होते हैं? नजरी होते हैं, फिल अगलबी अक्सर औकात में, गालिबन गालिबन ये क्या होते हैं? नजरी होते हैं, जिनके लिए दलील की जरूरत पड़ती है, वक़द तकूनु बदीहियातिन मोहताजतन इला तंबीहिन, बदीहियातिन है मौसूफ और मोहताजतन है उसकी सिफत सवाल, बदीहियातिन इस पर मैं जर पढ़ रहा हूं और मोहताजतन इस पर मैं नसब पढ़ रहा हूं, हालांकि मौसूफ सिफत का एराब तो एक होता है जी, हां शाबाश, ये दोनों मंसूब हैं, हां बदीहिया चूंकि जमा मुअन्नस सालिम है इसका नसब आता ही कसरा की सूरत में है, तो ये जर नहीं है, ये कसरा है, ये नसब है, तो ये मंसूब, तो मोहताजतन उसकी सिफत भी मंसूब, और ये काना की खबर है और काना की खबर मंसूब होती है। तो कहते हैं वक़द तकूनु बदीहियातिन मोहताजतन इला तंबीहिन, और कभी कभार वो जो मसाइल होते हैं वो ऐसे बदीही होते हैं जो मोहताज होते हैं तंबीह के, जो किसके मोहताज होते हैं? तंबीह के मोहताज होते हैं। भाई इन्होंने क्या बतलाया कि इस इलम के मसाइल वो बदीही भी हो सकते हैं और नजरी, नजरी हो फिर तो बात समझ में आती है, नजरी के इस बात के लिए दलील की जरूरत पड़ती है, तो इस इलम में भी क्या किया जाएगा? उनके लिए दलाइल जिक्र करके दलाइल से उनको साबित किया जाएगा। लेकिन ये कहा कि वो बदीही होते हैं, भाई बदीही के लिए तो किसी दलील की जरूरत नहीं, तो फिर उनके बारे में बहस करने का क्या माना? कहते हैं भाई बदीही भी दो किस्म के हैं, एक बदीही जली होता है, जली यानी जाहिर, जाहिर होता है और फौरन समझ में आ जाता है, और कुछ बदीही वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा खिफा होता है, पोशीदगी होती है, बात समझ में आ गई, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी तंबीह चाहिए, कोई थोड़ा सा मामूली सा बयान चाहिए ताकि उससे खिफा क्या हो जाए? दूर हो जाए। ये माना है, कहते हैं वही तकून नजरियतन फिल अगलबी, और ये मसाइल जो है नजरी होते हैं अक्सर औकात यानी गालिब औकात में, वक़द तकून बदीहियात मोहताजतन इला तंबीहिन, और कभी कभार ये ऐसे बदीही होते हैं जो मोहताज होते हैं तंबीह के। वक़ौलुहु तुतलबु फिल इल्मी यउम्मुल क़िस्मैनी, बाज किताबों में होगा या उम्मुल कबीलतैनी, दोनों का एक ही माना है किस्मैन और कबीलतैन। व कौलहु तुतलबु फिल इल्मी, ये मुसन्निफ का कौल, जरा मतन देखिए, मतन में जहां बात आई थी कि वल मसाइलु वही कजाया तुतलबु फिल इल्मी, और मसाइल जो है वो ऐसे कजिए होते हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, उस इलम में क्या होते हैं, मतलूब होते हैं। तो इस पर बज़ाहिर ये लगता है देखो वो कज़िये मतलूब होते हैं, और मतलूब किसको कहते हैं, नतीजे को। मालूम हुआ उनके लिए दलील चाहिए, क्या चाहिए, कियास के जरिए जो नतीजा आता है वो किसको क्या कहते हैं, मतलूब। तो उसके लिए कियास यानी दलील को जिक्र किया जाता है, मतलूब तो नतीजे को कहते हैं और उसके लिए क्या जिक्र करना जरूरी, दलील। और दलील किसके लिए होती है, नजरी के लिए होती है, बदीही के लिए दलील की जरूरत नहीं। तो बजाहिर यूं लगता है मुसन्निफ का ये जो कौल मतन में आया था, वही कजाया तुतलबु फिल इल्मी, वो ऐसे कजिए हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, तो बजाहिर लगता है कि ये मसाइल हमेशा नजरी होंगे, क्योंकि ये मतलूब हैं, और मतलूब वो होते हैं जिनके लिए दलील चाहिए, और दलील उसके लिए चाहिए होती है जो नजरी होते हैं। मालूम हुआ ये कजाया भी क्या होंगे, नजरी होंगे हमेशा। लेकिन शारह आपको बतला रहे हैं नहीं, देखिए शरा में देखिए, वकौलहु तुतलबु फिल इल्मी यउम्मुल क़िस्मैनी, और मुसन्निफ का कौल जो आयात के तुतलबु फिल इल्मी यानी वो इलम में मतलूब होते हैं, यउम्मुल क़िस्मैनी, ये आम है, दोनों किस्मों को शामिल है, दोनों किस्मों को शामिल है। तो मतलूब होने का यह माना नहीं कि उन पर दलील जिक्र की जाए, हां वो नजरी होंगे और अक्सर वो नजरी होते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, दलील चाहिए। और अगर वो बदीही हैं लेकिन उनमें खफा है तो फिर उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए तंबीह चाहिए, थोड़ा सा बयान चाहिए। तो कहते हैं वकौलुहु तुतलबु फिल इल्मी यउम्मुल क़िस्मैनी, और मुसन्निफ का कौल तुतलबु फिल इल्मी वो यउम्मुल क़िस्मैनी वो आम है, दोनों किस्मों को शामिल है, यानी वो कज़ाया नजरी भी हो सकते हैं और बदीही खफी भी हो सकते हैं। व अम्मा मा यूजदु फी बाज़ नुसख़ मिन अत-तख़सीस बिक़ौलिही बिल बुरहान फमिन ज़ियादातिन नासिख़ी, भाई फिर मतन पर आइए, जहां मसाइल की बात आई थी, वल मसाइलु वही कजाया तुतलबु फिल इल्मी, कहते हैं बाज नुस्खों में यहां बिल बुरहान की कैद भी मौजूद है, वही कजाया तुतलबु फिल इल्मी बिल बुरहानी, ये वो कजिए होते हैं जो इलम में मतलूब होते हैं बुरहान के जरिए, बुरहान की कैद लगा दी। और बुरहान तो कियास की किस्म है जिसके मुकदमात क्या होते हैं, यकीनी, तो ये दलील का नाम है, और दलील तो हमेशा किसके लिए चाहिए, नजरी के लिए चाहिए। तो कहते हैं बिल बुरहान की कैद बाद नुस्खों में मौजूद है, और उस सूरत में नजरी तो दाखिल, मसाइल मालूम हुआ नजरी होंगे, बदीही नहीं, क्योंकि बुरहान की जरूरत नजरी के लिए पड़ती है, बदीही के लिए नहीं पड़ती। बदीही के लिए कभी बयान चाहिए होता है, कभी तंबीह चाहिए होती है। तो कहते हैं वह अम्मा मा यूजदु फी बाज़ नुस्खि मिन अत-तख़सीस बिक़ौलिही बिल बुरहानी, कहते हैं बाकी वो जो बाद नुस्खों में तख़सीस पाई जाती है, बिक़ौलिही बिल बुरहानी, मुसन्निफ के कौल बिल बुरहान की बाद नुस्खों में तख़सीस पाई गई है, बिल बुरहान की कैद भी मतन में मौजूद है। कहते हैं फमिन ज्यादातिन नासिखी, ये नासिख लिखने वाला, ये लिखने वालों की ज्यादती में से है, लिखने वालों की, यानी भाई पुराने जमाने में ये किताबें हाथ से नकल की जाती थीं, तो किसी नकल करने वाले ने गलती से यहां क्या दर्ज कर दिया, बिल बुरहान दर्ज कर दिया, तो ये लिखने वालों की तरफ से ये ज्यादती हुई, ये उन्होंने लफ्ज ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई, तो बिल बुरहान कैद बन गई, और कैद के जरिए एक चीज में तख्सीस आती है, बिल बुरहान ना हो तो इस सूरत में यह आम है, ये बदीहियात को भी शामिल और नजरियात को भी, लेकिन अगर बिल बुरहान की कैद आ गई तो इसमें तख्सीस आ जाएगी, और सिर्फ कौन रह जाएंगे, नजरी तो रह जाएंगे और बदीही निकल जाएंगे, इसलिए इसको तख्सीस के साथ जिक्र किया। कहते हैं वह अम्मा मायू जो दुफी बाज इन नुस्खी मीन तख्सीसी बी कौल ही बिल बुरहानी, और वो जो बाज नुस्खों में मुसन्निफ के कौल बिल बुरहान की तख्सीस पाई गई है, फमिन ज्यादात इन नासिखी, तो ये लिखने वालों की ज्यादती है, यानी उन्होंने अपनी तरफ से यह लफ्ज बढ़ा दिया है। आला अन्नहू युमकिनु तौजीहू, इलावा इसके कि इसकी तौजीह भी मुमकिन है, इसकी तौजीह भी मुमकिन है भाई, तौजीह यानी कलाम के, तौजीह कहते हैं कलाम का ऐसा माना करना कि एतराज और इश्काल खत्म हो जाए, एतराज और इश्काल खत्म हो जाए भाई। तो कहते हैं इसकी तौजीह भी मुमकिन है, बी अन्नहु बिना अन अलल अगलबी, के ये बिना बर अगलब के है, यानी गालिब का एतबार करते हुए बिल बुरहान की कैद लगा दी, अगर यह मुसन्निफ ने लगाई है तो यह गालिब का एतबार करते हुए, भाई इस इलम के मसाइल हैं और वह मसाइल नजर भी हो सकते हैं और बदीही भी हो सकते हैं जिनमें खिफा है। तो देखो इस इलम के इस इलम के जो मसाइल हैं वो कुछ बदीहियात हैं और कुछ क्या हैं, नजरियात हैं। तो जब मसाइल बदीहियात और नजरियात दोनों हैं तो यहां बिल बुरहान की कैद दुरुस्त नहीं बनती, लेकिन शारह आपको बतला रहे हैं कि इसकी तौजीह की जा सकती है कि ये जो कैद लगाई गई बिना बर अगलब के है, यानी अक्सर के एतबार से है, चूंकि अक्सर मसाइल इस फन के क्या हैं, नजरी हैं, बदीही हैं, लेकिन वो थोड़े से हैं तो उनको गोया शुमार ही नहीं किया, अक्सर का एतबार करते हुए कौन सी कैद बढ़ा दी, बिल बुरहान की, कि चूंकि अक्सर मसाइल नजरी हैं तो अगलब के एतबार से वो कैद बढ़ा दी भाई। ये माना है कि अला अन्नहु युमकिनु तौजीहुहु बी अन्नहु बिना अन अलल अगलबी, इलावा इसके कि इसकी तौजीह भी मुमकिन है कि ये बिना बर अगलब के है, यानी अक्सर मसाइल नजरी होने की वजह से है। और बी अन अल मुराद, यह दूसरी तौजीह है, और बी अन अल मुराद बिल बुरहानी मा यशमल तंबीहा, मेरी किताब में है मायश्ता मीलू, ये किताबत की गलती है, मायश मलू होना चाहिए, मायश मलू तम भी हा। बाकी दूसरी तौजीह कर रहे हैं, दूसरी तौजीह के बुरहान से मुराद आप वो दलील न लें जो पीछे जिक्र हुई थी, बुरहान का आम माना कर लें जो दोनों को शामिल हो जाए, नजरी के लिए क्या चाहिए दलील, और बदीहे खफी के लिए क्या चाहिए तंबीह चाहिए, तो बुरहान का माना आम कर लें, उससे वो दलील मुराद ना लें, यानी बुरहान का कोई ऐसा माना कर लें जो दोनों को शामिल हो जाए, यानी बुरहान से मुराद ले लें, यानी बयान मुराद ले लें, क्या मुराद ले लें, बुरहान से वो खास दलील जो पीछे जिक्र हुई थी वो मुराद ना लें। तो इस सूरत में जब बयान मुराद लिया तो बयान तंबीह के जरिए भी हो सकता है और बयान दलील के जरिए भी हो सकता है, दोनों इसके अंदर दाखिल हो गए। तौजीहात समझ में आई, क्या तौजीह, पहली तौजीह क्या, पहले तो सबसे पहले तो मुसन्निफ ने यह कहा कि यह बुरहान की जो कैद आई मतन के अंदर यह किसी लिखने वाले की गलती है, और या कहते हैं इसकी तौजीह भी की जा सकती है, एक तौजीह यह कि बिल बुरहान की कैद लगाई अक्सर मसाइल की तरफ नजर करते हुए, और अक्सर चूंकि नजरी है उनके लिए बुरहान की जरूरत है इसलिए यह कैद बढ़ा दी, और या बिल बुरहान का वो माना न करें जो दलील वाला है, बुरहान का माना आम ऐसा माना कर लें कि जो शामिल हो जाए किसको, दलील को भी और तंबीह को भी शामिल हो जाए। तो इस सूरत में ये बुरहान की कैद भी रहे फिर भी माना में कोई खलल नहीं आता। तो ये माना है औ बी अन अल मुराद बिल बुरहानी मा यशमल तंबीहा, और या ये कि जो बुरहान जो है उससे मुराद वो चीज है जो तंबीह को शामिल है। अस्सालिसु, तीसरी चीज, पहली चीज क्या थी, तमाम उलूम में मुदव्वना में तीन चीजों का होना जरूरी, नंबर एक क्या, वो चीज जिसकी खसूसियात और जो उससे नताइज मतलूब होते हैं उनके बारे में उस इलम में बहस की जाए और वो उस इलम के मौजूआत हैं भाई, और दूसरी बात क्या कि वो इस इलम के मसाइल होते हैं वो कजिए जो नजरी भी हो सकते हैं और बदीही भी हो सकते हैं लेकिन उनमें खिफा होता है, और तीसरी चीज अब वो जिक्र करने लगे असालिसु मा यबतनी अलैहिल मसाइलु, तीसरी वो चीज जिन पर मसाइल मौकूफ होते हैं, मसाइल की बुनियाद होती है, मिम्मा युफीदु तसव्वुराति अतराफिहा व तस्दीकाति बिल कजायल माखूजति फी दलाइलिहा, यानी वो चीजें मिम्मा, ये मिन बयानिया है, देखो मा यबतनी अलैहिल मसाइलु, तीसरी वो चीज है जिन पर मसाइल की बुनियाद होती है, भाई वो क्या चीज है हमें तो नहीं समझ में आया, बात समझ में आ रही है? वो चीज जिन पर मसाइल की बुनियाद होती है वो क्या चीज है, हमें तो नहीं समझ में आया। तो बाज औकात मौसूल आता है, मौसूल का सिला लाया जाता है, जैसे यहां मां मौसूला है, यब तनी अलैहिल मसाइल इसका सिला है। लौर मौसूल सिला मिलकर भी बात पूरी वाजह नहीं होती तो आगे फिर मीन के जरिए उसको क्या कर दिया जाता है, बयान कर दिया जाता है। तो ये मीम मा, ये बयान है इसी मा यबतनी का भाई। तो तीसरी वो चीज है जिन पर उन मसाइल की बुनियाद होती है, यानी कि वो चीजें मीम मा, यानी कि वो चीजें युफीदु तसव्वुराती अतराफिहा, जो उन मसाइल के अतराफ के तसव्वुर का फायदा दें। और इसी तरह अत्तस्दीकाती बिल कजाया, ऐसे कजियों की तस्दीकात अल माखूजती फी दलाइलिहा, जो माखूज होते हैं उनके दलाइल में। जो भाई देखिए, हर इलम के लिए तीन चीजों का होना जरूरी, पहली चीज है उसके मौजूआत, दूसरी चीज उसके मसाइल, और ये जो मसाइल हैं मसाइल कजियों का नाम है, और कजिये के अंदर एक मौजू होता है और एक महमूल। जैदुन काइमुन, इसमें जैद क्या है मौजू, और कायमुन क्या है महमूल है। तो पहले आपको मौजू का पता तो होना चाहिए कि जैद कौन है, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि कायमुन इसका क्या माना है। अगर आपको जैद का माना नहीं मालूम, जैद का तसव्वुर नहीं हासिल, तो भी यह कलाम आपको फायदा नहीं देगा। और अगर आपको कायमुन का तसव्वुर हासिल नहीं है कि कायमुन का क्या माना होता है, तो भी यह कलाम आपको फायदा नहीं देगा। यह वैसे मिसाल से समझा रहा हूं। मसलन देखो, उस इलम में आता है अल कलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन। तो आपको अल कलिमा का तसव्वुर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, तो उसकी तारीफ करना पड़ेगी। और इसी तरह आपको जो आगे महमूल आ रहा है कि वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इसका भी तसव्वुर चाहिए या नहीं चाहिए? जब दोनों का तसव्वुर आपको हासिल होगा, फिर ही आपको बात समझ में आएगी कि अल कलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हर्फुन इस जुमले का क्या माना है। तो इन मसाइल के जो दो तरफैन होती हैं, कौन सी तरफैन? मौजू और महमूल, उन दोनों का तसव्वुर चाहिए। और दोनों का तसव्वुर किससे हासिल होगा? तारीफ के जरिए। और तारीफ किस में से है? तसव्वुरात में से है। इसी तरह आगे उस इलम के मसाइल बयान होंगे, और मसाइल के लिए दलाइल लाएंगे, और दलाइल किस पर मुश्तमिल होते हैं? मुकदमों पर। कियास जो है इसी का नाम दलील है भाई। आप सुगरा और कुबरा मिलाते हैं और नतीजा निकल आता है, बात साबित कर देते हैं आप। तो ये जो सुगरा और कुबरा होंगे ये मुकदमे होंगे भाई, इन्हीं से, इन दो मुकदमों से ये दलील बनी है। तो ये वो मबादी की बात चल रही है। मबादी क्या होंगे? इन्होंने आपको ऊपर बतलाया था, वो मौजूआत की तारीफ होती है, या उनके अज्जा की तारीफ होती है, या उनके आराज़े ज़ातिया की तारीफ। जब ये तारीफ करेंगे तो आपको उनका तसव्वुर हासिल हो जाएगा। और नीज मबादी कुछ तस्दीकात होती हैं, वो तस्दीकात कुछ ऐसे मुकदमात होते हैं जिनसे इस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं, जिनसे इस इलम के दलाइल बनते हैं। तो ये मबादी तसव्वुरिया भी इसमें आ गए और मबादी तस्दीकिया भी आ गई। यही बयान कर रहे हैं कि सालिसु मा यबतनी अलैहिल मसाइलु, और तीसरी वो चीज है जिन पर उस इलम के मसाइल की बुनियाद होती है। मिम्मा युफीदु तसव्वुराती अतराफिहा, यानी वो चीजें जो उन मसाइल के अतराफ जो हैं, यानी मौजू और महमूल, उनके तसव्वुरात का फायदा दें। मौजू और महमूल के, और वो फायदा कौन देंगे? मबादी तसव्वुरिया। मबादी तसव्वुरिया व तस्दीकात बिल कजाया, ये तस्दीकात का आतफ है। मीम मा युफीदु, ये मा पर कर लें आतफ, तो अत तस्दीकात इसका आतफ है मीम मा के अंदर, जो मा मौसूला है और जो इबारत है तारीफात से, ये उस पर आतफ है, यानी कि वो तारीफात व तस्दीकात, और वो तस्दीकात। मिम्मा युफीदु तसव्वुरात या तराफिहा व मिनत तस्दीकाती बिल कजाया, मिनत तस्दीकाती बिल कजाया माखूजती फी दलाइलिहा, और यानी वो तस्दीकात बिल कजाया, यानी कजियों की वो तस्दीकात अल माखूजती, हां यूं तर्जमा करें, बिल कजाया माखूजती फी दलाइलिहा, इसका तर्जमा पहले करें और अत तस्दीकात का तर्जमा बाद में करें। वो कजिये जो माखूज होते हैं इन मसाइल के दलाइल में, वो कजिए जो, यानी वो कजिए जो लिए जाते हैं इस इलम के दलाइल में, जिनसे दलाइल बनाए जाते हैं, उनकी जो तस्दीकात। फिर सुनो, तीसरी वो चीज है जिन पर उस इलम के मसाइल की बुनियाद होती है। वो क्या चीजें हैं भाई? मीन के जरिए बयान है, यानी मिम्मा युफीदु तसव्वुराती अतराफिहा, यानी वो चीजें, यानी वो तारीफात जो फायदा देती हैं, मां से मुराद लेने तारीफात, यानी वो तारीफात जो फायदा देती हैं इस इलम के मसाइल के अतराफ के तसव्वुर का, इस इलम के अतराफ के तसव्वुर का फायदा देती हैं वो तारीफात व तस्दीकाती, और वो कजिए जो लिए जाते हैं उन मसाइल के दलाइल के अंदर उनकी तस्दीकात। मा यब्तनी अलैहिल मसाइल, जिन पर मसाइल की बुनियाद होती है वो क्या चीजें हैं? वो कजिए, तवज्जो से इधर देखो, वो कजिए जो इस इलम के मसाइल में अखज किए जाते हैं, लिए जाते हैं, यानी जिनसे इस इलम के मसाइल के दलाइल बनाए जाते हैं, उन कजाया की तस्दीकात, उन कजाया की तस्दीकात, वो उन पर उस इलम की बुनियाद है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई भाई? देखो ना, कल आपने पढ़ा था कि मबादी में क्या चीजें शामिल हैं, मबादी तसव्वुरिया भी और मबादी तस्दीकिया भी। अब उन्हीं दोनों को ये बयान कर रहे हैं कि तीसरी वो चीज है मायब तनी अलैहिल मसाइल, जिन पर मसाइल की बुनियाद होती है, और मसाइल की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अभी कल पढ़ा आपने, मबादी तसव्वुरिया है कुछ और कुछ मबादी तस्दीकिया। तो मिम्मा युफीदु तसव्वुराती अतराफिहा, ये मबादी तसव्वुरिया को बयान किया, व तस्दीकाती बिल कजाया अल माखूजते फी दलाइलिहा, ये मबादी तस्दीकिया को बयान किया। वो क्या चीजें हैं? मीन के साथ बयान है, यानी वो तारीफात, मां से मुराद ले लें तारीफात, वो तारीफात जो फायदा देती हैं किस चीज के तसव्वुरात का? अतराफिहा, उन मसाइल के जो अतराफ हैं, मौजू और महमूल के तसव्वुरात का फायदा देती हैं, यानी मबादी तसव्वुरिया, यानी वो जो तारीफात थी मौजूआत की और उनके अज्जा की और उनके अराज़े ज़ातिया की, और दूसरी क्या चीज थी? मबादी तस्दीकिया। तो इस पर यह तस्दीकात पर भी मीन दाखिल करें, यह उस मां पर आतफ है। व मिनत तस्दीकात बिल कजायल माखूजती फी दलाइलिहा, और वो कजिए जो माखूज होते हैं, जो लिए जाते हैं इन मसाइल के दलाइल में, जो जिक्र किए जाते हैं इस इलम के मसाइल के दलाइल में, उनकी तस्दीकात, उन कजियों की जो तस्दीकात हैं उन पर इस इलम के मसाइल मबनी होते हैं, उन कजियों की तस्दीकात। दो दो चीजें जिक्र कर दी जिन पर इलम के मसाइल की बुनियाद होती है, मिम्मा, मां से मुराद क्या? तारीफात, यानी कि तारीफात व तस्दीकात, और क्या चीज? तस्दीकात। तारीफात कौन सी? जो इनके अतराफ के तसव्वुर का फायदा दें, मौजू और महमूल का। और तस्दीकात कौन सी? उन कजाया की जो इस इलम के दलाइल में माखूज होते हैं। अब बात समझ में आ गई। फल अव्वलु हियल मबादी तसव्वुरियतु वस्सानी हियल मबादी तस्दीकियतु, तो अव्वल जो है वो मबादी तसव्वुरिया हैं और दूसरे जो हैं वो मबादी तस्दीकिया हैं। कौलुहुल मौजूआत, हा हुना इश्काल उन मशहूर, उन यहां मशहूर इश्काल है, एतराज है, वह हुआ अन्न, और वो ये कि अन्न मन अद्दल मौजूआ। अच्छा भाई इधर देखिए, बात को समझ लीजिए, यहां इश्काल करेंगे। इश्काल ये कि आपने क्या कहा कि इलम के अजजा तीन चीजें हैं, पहली चीज क्या? मौजूआत। आपने मौजूआत को इलम के अजजा में से करार दे दिया, तो ये मौजूआत से आपकी क्या मुराद है? क्या नफ्से मौजूआत मुराद हैं, या मौजूआत का मुआर्रिफ यानी उनकी तारीफ मुराद है, या वो तस्दीक मुराद है जो इनके वजूद के बारे में हो, या वो तस्दीक मुराद है जो इनके मौजू होने के बारे में हो? तवज्जो है जी। यहां एतराज होता है, इश्काल होता है। एतराज ये कि आपने कहा कि उलूम के अजजा तीन हैं, यानी मौजूआत, मबादी और मसाइल, तो आपने मौजूआत को उलूम का जुज करार दिया। आपके इस कहने का क्या मतलब है? आपके कहने का या तो मतलब यह है कि नफ्से मौजू जो है वो इस इलम का जुज होता है, या आपके कहने का मतलब यह है कि उस मौजू की जो तारीफ है वो इस इलम का जुज होता है, या आपके कहने का मतलब यह है कि उस मौजू के वजूद की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है। यह आपके कहने का मतलब यह है कि इसके मौजू होने की जो तस्दीक है वह इस इलम का जुज है। मसलन अलकलीमा है, आप कहना यह चाहते हैं कि अलकलीमा इल्म नहु का मौजू है। आपने क्या कहा, मौजूआत क्या होते हैं, उलूम के अज्जा, उलूम के अज्जा होते हैं। तो आपकी क्या मुराद है, या तो नफ्से कलीमा मुराद है, मसलन नहु का मौजू में जिक्र करता हूं तो इसके मुताबिक कलीमा और कलाम क्या है, इल्म नहु का जुज है। क्या है, उलूम के तीन अज्जा है ना, मौजूआत मबादी और मसाइल। तो मालूम हो मौजूआत भी क्या है, उस इलम के अज्जा है, उसके अंदर दाखिल है। तवज्जो है, अज्जा है उसके अंदर दाखिल है। तो आपके इस कहने का क्या मतलब है, या तो इससे मुराद यह है नफ्से कलीमा, आपके कहने का मतलब यह नफ्से कलीमा क्या है, इस इलम का वो इस इलम के अंदर दाखिल है, तवज्जो है। या आपके कहने का मतलब यह कलीमा की जो तारीफ है, अल कलीमतु लफ्जुन वुज़िअ लिमअना मुफ़रदीन, या तो तारीफ मुराद है। तो आपके कहने का मतलब यह है, मसलन कलीमा है, कलीमा इल्म नहु का मौजू है, तो आपके कहने का मतलब या तो यह है कि नफ्से कलीमा जो है वह इस इलम का जुज है, इसके अंदर दाखिल है। या आपके कहने का मतलब यह है कि कलीमा की जो तारीफ है, अलकलीमतु लफ्जुन वुज़िअ लिमअना मुफ़रदीन, यह क्या है, इल्म नहु का जुज है, इसके अंदर दाखिल है। यह आपके कहने का मतलब यह है कि कलीमा के वजूद की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है। या आपके कहने का मतलब यह है कि इस कलीमा के मौजू होने की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है। तवज्जो है, चार चीजें आपने कहा कि ये जो मौजूआत होते हैं ये उलूम का जुज होते हैं। तो आपके इस कहने का क्या माना, क्या माना, या तो आपके कहने का मतलब यह है कि नफ्स से मौजू जो है वो इस इलम का जुज होता है, या उस मौजू की जो तारीफ होती है वो उस इलम का जुज होती है, या उस मौजू के वजूद की जो तस्दीक है वो उस इलम का जुज होती है, या उस मौजू के मौजू होने की जो तस्दीक है वो उस इलम का जुज है। बात समझ में आ रही, जरा किताब पर देखो बात और वाजे होगी। कहते हैं हा हुना इश्काल उन मशहूर उन, और यहां पर मशहूर इश्काल है, मशहूर एतराज है। वह हुआ और वो ये कि अन्न मन अद्दल मौजू अमीन अज्जा इल इल्मी, कि जिसने मौजू को इलम के अज्जा में से शुमार किया, इम्मा अयुरीद अभी ही नफ्सल मौजू, या तो उसने इरादा किया इसके जरिए नफ्स मौजू का, कि नफ्स मौजू क्या है, इलम का जुज है। जैसे अलकलीमा, यह नफ्स कलीमा क्या है, इस इलम का जुज है। औ तारीफ, या उसने उस मौजू की तारीफ का इरादा किया कि उस मौजू की जो तारीफ है वो इस इलम का जुज है। जैसे अलकलीमा की तारीफ क्या है, अलकलीमा तो लफ्ज वुज़िअ लिमअना मुफ़रदीन, तो उस कहने वाले का मतलब यह है कि ये जो तारीफ है ये इस इलम का जुज है। अभी तस्दीक अभी वजूद ही, या उसका इरादा यह है कि वह जो तस्दीक है इस मौजू के वजूद की वो इस इलम का जुज है। अभी तस्दीक अभी मौजूत ही, या वो जो तस्दीक है इसके मौजू होने की, इस मौजू के इस इलम का मौजू होने की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है। देखिए यहां चार चीजें हैं भाई, इन्होंने मौजू है इलम को इलम का जुज करार दिया कि इलम का मौजू क्या होता है, उस इलम का जुज होता है। कहते हैं आपके इस कहने का क्या मतलब है, या तो आपकी मुराद होगी कि वह नफ्स मौजू क्या है इस इलम का जुज, या उस मौजू की जो तारीफ है यानी जो मुआरिफ है वो है इस, वो इस इलम का जुज है, या उसके वजूद की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है, या इस मौजू के इस इलम का मौजू होने की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है। आपकी मुराद क्या है, एक है नफ्स मौजू, नफ्स मौजू समझ में आया, अलकलीमा मसलन अलकलीमा, जिन्होंने मौजू को इलम का जुज करार दिया, या तो उनकी मुराद है नफ्स मौजू, नफ्स मौजू जैसे अलकलीमा है, तो या तो उनका यह इरादा है कि जो नफ्स मौजू है यह इस इलम का जुज होता है, या उनका इरादा यह है कि ये जो इस मौजू की जो तारीफ होती है जैसे अलकलीमतु लफ्जों वुज़िअ लिमअना मुफ़रद, यह तारीफ जो है यह इस इलम का जुज है, या इस मौजू के वजूद की जो तस्दीक है, इस मौजू के वजूद की जो तस्दीक है वो इस इलम का जुज है। भाई देखिए देखिए, वजूद की तस्दीक। इल्म नहव में किसके बारे में बहस की जाती है? कलिमा और कलाम के बारे में। पहले यह तो बतलाओ कलिमा का वजूद भी है कि नहीं, कलिमा का वजूद तो साबित करो, कलिमा है कोई चीज। जब कलिमा का वजूद होगा तो फिर ही आप उसके आराज़े जातिया से भी बहस करेंगे। पहले एक चीज का वजूद होना चाहिए, फिर उसके लिए आप उसकी सिफात को साबित करें, आराज़े जातिया को साबित करें। तो पहले एक चीज का वजूद तो साबित होना चाहिए कि इस चीज का वजूद भी है, फिर उसके बाद आप उसके आराज़े जातिया के बारे में बहस करेंगे। तो अल कलिमा तो मौजूद, कलिमा क्या है? मौजूद है। नफ्सुल अमर में कलिमा का वजूद है। तो ये देखो, ये तस्दीक है, अल कलिमा तो मौजूद, कलिमा मौजूद है, उसका वजूद है, या तो ये तस्दीक मुराद है। ये इस इलम का, इस इलम का जुज है, इस इलम का। तो ये कौन सी तस्दीक है? मौजू के वजूद की। ये कौन सी तस्दीक है? इसमें मौजू के वजूद को जिक्र किया गया है कि मौजू का वजूद है। नहव का मौजू क्या? कलिमा और कलाम। तो आप कहते हैं अल कलिमतु वल कलाम मौजूदान, ये दोनों क्या हैं? मौजूद हैं। तो ये देखो, ये तस्दीक है या तसव्वुर है? ये पूरा जुमला है, ये तस्दीक है। और ये तस्दीक है किस चीज की? वजूद मौजू की। किसकी? जिसमें वजूद मौजू जिक्र है कि इसका वजूद है। भाई बात समझ में आ गई। तो पहले एक चीज का वजूद तो साबित हो जाए, फिर आप उसके लिए उसके आराज़े जातिया भी साबित करें, उनके बारे में बहस करें। तो ये तस्दीक हुई किस चीज की? मौजू के वजूद के बारे में। तो ये मौजू के वजूद की तस्दीक हुई भाई। और चौथी सूरत है कि उसके मौजू होने की तस्दीक, उसके मौजू होने की तस्दीक। जैसे आपको बताते हैं, इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। ये देखो, ये पूरा जुमला है, तो ये तस्दीक है। और इसमें क्या जिक्र हो रहा है? इसमें बतलाया जा रहा है कि इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। तो देखा, कलिमा और कलाम के इस इलम का मौजू होने की तस्दीक है। ये कलिमा और कलाम के ये तस्दीक है ना, जिसमें क्या जिक्र है? मौजू जिक्र है या नहीं है? मौजू जिक्र है। तो एक है, देखो, एक है नफ्से मौजू। नफ्से मौजू तसव्वुर का नाम है। तो कहने वाले का या तो इरादा यह है कि जो नफ्से मौजू होता है, यानी अल कलिमा और अल कलाम, ये क्या है? उस इलम यानी इल्म नहव का जुज है, तवज्जो है। या इससे क्या मुराद है? उस मौजू की तारीफ भाई, और तारीफ भी क्या है? तसव्वुर है। या उस कहने वाले का माना यह है कि तस्दीक मुराद है, और तस्दीक कौन सी? वजूद मौजू की तस्दीक, जिसमें यह जिक्र होता है कि इस चीज का वजूद है। जब ये इसका वजूद है तो इसकी सिफात भी हैं। तो वजूद मौजू की तस्दीक, या उस मौजू के उस इलम का मौजू होने की तस्दीक, उस मौजू के मसलन आप जब किसको इलम पढ़ते हैं तो आपको बतलाते हैं, यानी कि ये इस इलम का मौजू ये है। क्या बतलाते हैं? इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। ये पूरा जुमला है या अधूरा जुमला है? पूरा जुमला है। तो इसको तस्दीक कहेंगे या तसव्वुर कहेंगे? तस्दीक। ये तस्दीक है किस चीज की? ये तस्दीक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये चीज इस इलम का मौजू है। या जैसे मंतिक के बारे में आपको बताते हैं कि मंतिक का मौजू मुआरिफ और हुज्जत है। तो देखा, ये मुआरिफ और हुज्जत के मौजू होने की तस्दीक है कि यह मौजू है। किस चीज के लिए? इल्म मंतिक के लिए। इल्म नहव के शुरू में आपको बतलाते हैं इल्म नहव का मौजू क्या है? कलिमा और कलाम है। तो शुरू में एक तस्दीक लेकर आते हैं हर इलम के शुरू में, उस इलम की तारीफ, मौजू और गरजो गायत को जिक्र करते हैं। तो मौजू के लिए क्या जुमला बोलते हैं? इस इलम का मौजू मसलन नहव है, इस इलम का मौजू कलिमा और कलाम है। या यूं कहते हैं, इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है। देखा, यह एक तस्दीक है जिसमें क्या जिक्र है? कलिमा और कलाम का मौजू होना जिक्र है, कलिमा और कलाम का, कि ये इस नहव का मौजू है। या दूसरी तस्दीक ले लें मंतिक के लिए, जो अभी मैंने जिक्र की, इल्म मंतिक का मौजू मुआरिफ और हुज्जत है। ये कौन सी तस्दीक है? ये पूरा कलाम है, ये तस्दीक है। इसमें क्या जिक्र हो रहा है? मुआरिफ और हुज्जत का मौजू होना जिक्र किया जा रहा है मंतिक के लिए। या जैसे तफसीर है, इल्म तफसीर के में आपको बतलाते हैं कि तफसीर का मौजू कुरान है। देखा, वो उसमें कुरान के मौजू होने को जिक्र किया जाता है। तो जिन्होंने कहा कि ये जो मौजूआत हैं ये इलम का जुज होते हैं, उनकी क्या मुराद है? अगर उनकी मुराद नफ्स मौजू है कि ये जो अल कलिमा है ये क्या है, इस इलम का जुज है, या अल कलाम ये क्या है, इस इल्म नहु का जुज है, या मुअर्रिफ क्या है, इल्म मंतिक का जुज है, या हुज्जत क्या है, जुज है। तो नफ्स से मौजू मुराद है, या मौजू की तारीफ मुराद होगी कि वो क्या है, इस इलम का जुज है, या उस मौजू के वजूद की जो तस्दीक है जिसमें ये जिक्र हो कि इसका वजूद है, वो तस्दीक मुराद है, वो मुराद है कि वो क्या होती है, इलम का जुज होती है। या मुराद क्या है, वो तस्दीक मुराद है जिसमें ये जिक्र होता है कि ये इस इलम का मौजू है, भाई उसके मौजू होने की जो तस्दीक है। बात समझ में आ गई जी। अब देखिए किताब पर, अन्न मन अद्दल मौजू अमिन अजजा इल उलूमी, वो जिसने शुमार किया मौजू को इलम के अजजा में से, इम्मा अन युरीद बिही नफ्सल मौजू, या तो उसका इरादा है उसके जरिए नफ्स मौजू का, यानी नफ्स मौजू का कि यह इस इलम का जुज होता है, औ तारीफहू, या उसने इरादा किया उस मौजू की तारीफ का कि क्या होती है, उस इलम का जुज होती है, अभी तस्दीक भी वजूद ही, या उसने इरादा किया उस तस्दीक का जो उस मौजू के वजूद की है, जो उस मौजू के वजूद की जो तस्दीक है उसका उसने इरादा किया कि ये क्या होती है, इलम का जुज होती है, अभी तस्दीक भी मौजूयती ही, या उसने इरादा किया उस तस्दीक का जो उस चीज के उस इलम का मौजू होने की तस्दीक है उसका इरादा किया। बात भी समझ में आई कि नहीं समझ में आई जी? नहीं समझ में आई भाई, देखिए फिर सुनो, जब बात समझ में ना आए तो मुझे बताया करें, वैसे ना सर हिलाया करें। देखो ऊपर मतन में भी बताया कि उलूम के अज्जा तीन हैं, मौजूआत, मबादी और मसाइल। अब इसी पर जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि जो मौजूआत होते हैं वो इस इलम का जुज होते हैं, उनके कहने का क्या मतलब है? या तो उनके कहने का ये मतलब है कि ये जो नफ्स मौजू है ये इस इलम का क्या होता है, जुज होता है, या तो ये माना होगा जी। या उनके कहने का मतलब ये है कि इस मौजू की जो तारीफ और मुआरिफ है वो क्या होती है, इस इलम का जुज होती, या तो उनका यह माना होगा, या उनके कहने का माना यह होगा कि इस मौजू के जो वजूद की तस्दीक है जिसमें यह जिक्र होता है कि इसका वजूद है, इसका वजूद है, ये अगर, या तो वो तस्दीक मुराद है कि कहना ये चाहते हैं कि वो तस्दीक जिसमें इस मौजू के वजूद का जिक्र होता है कि ये इसका वजूद है, ये मौजूद है, वो इस इलम का जुज है, या उनके कहने का यह मतलब है, या उनके कहने का मतलब यह है कि वो तस्दीक जिसमें यह जिक्र होता है कि यह इस इलम का मौजू है। हर इलम के शुरू में बताते हैं या नहीं, उस इलम की तारीफ, मौजू और गरज व गायत, मौजू में क्या बताते हैं, मंतिक का मौजू क्या बताते हैं, इल्म मंतिक का मौजू मुआरिफ और हुज्जत है। देखो यह एक पूरा कजिया है, पूरी तस्दीक है, तो या तो यह वाली तस्दीक मुराद है कि यह क्या होती है, इस इलम का जुज होती है। क्या माना है उनके कहने का, या तो उनके कहने का माना यह है नफ्स मौजू उस इलम का जुज होता है, या उस मौजू की तारीफ इलम का जुज होती है, या उसके वजूद की जो तस्दीक होती है वो उस इलम का जुज होती है, या उसके मौजू होने की जो तस्दीक है वो उस इलम का जुज होती है। अब बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल अव्वलु मुंदरिजुन फी मौजूआतिल मसाइली, और पहली चीज जो है, पहली चीज क्या, नफ्स मौजू, अगर इनका इरादा किसका है, नफ्स मौजू का है, तो कहते हैं फिर तो वो दर्ज है भाई पहले ही। इधर देखिए, मसाइल का जिक्र हुआ या नहीं, मसाइल किसका नाम है, कजियों का नाम है, और उन कजियों के कुछ मौजूआत होते हैं और कुछ महमूलात। मौजूआत क्या क्या होते हैं, उस इलम का मौजू होगा, या उसकी कोई नौ होगी, या उसके आरज़े जाती होगा, या इनसे मुरक्कब होगा। तवज्जो है, इन कजियों के मौजू क्या होते हैं, या तो वही उस इलम का मौजू जो हो, जैसे अलकलिमतु इम्मा मुअरबुन औ मबनियुन, ये इलम नहव का एक मसला है, और इसमें देखो इसका मौजू क्या, अलकलिमा, और अलकलिमा क्या है, वो इस इलम का मौजू है। तो अगर अगर कहने वाले का इरादा यह है कि मौजू से मुराद नफ्स मौजू मुराद है, तो नफ्स मौजू तो मसाइल के अंदर मौजू बन गया या नहीं बन गया, तो वो तो मसाइल के अंदर ही दाखिल हो गया। फिर इसको अलहदा क्यों शुमार किया? इलम के अज्जा तीन है, मौजूआत, मबादी और मसाइल। मसाइल आ गए या नहीं इसके अंदर? जब मसाइल आ गए तो मसाइल के मौजूआत भी आ गए और महमूलात भी आ गए, और मसाइल के मौजूआत में उस इलम का भी मौजू होता है या नहीं? तो वो तो वहीं पर दाखिल हो गया था, उसको फिर अलहदा क्यों जिक्र किया? जब कह दिया इस इलम के अज्जा मसाइल हैं तो मौजूआत भी उसके अंदर आ गए, तो इस मौजू को अलहदा क्यों जिक्र किया? तो कहते हैं वल अव्वल मुंदरिजुन फी मौजूआत अल मसाइल अल्लती हिय अज्जा अल मसाइल, और अव्वल यानी नफ्स मौजू जो है वो मुंदरिजुन, वो दर्ज है यानी दाखिल है, फी मौजूआत अल मसाइल, किसके अंदर? मसाइल के मौजूआत में। हां वो मौजूआत मसाइल में दाखिल है, वो मौजूआत मसाइल अल्लती हिय अज्जा अल मसाइल, जो मसाइल के अज्जा हैं। भाई हर मसले का दो जुज होते हैं, एक मौजू और एक महमूल, तो ये मौजूआत क्या हुए? उन मसाइल के अज्जा हो गए। तो कहते हैं वल अव्वल मुंदरिजुन फी मौजूआत अल मसाइल अल्लती हिय अज्जा अल मसाइल, और अव्वल यानी नफ्स मौजू वो तो दाखिल है उन मौजूआत मसाइल के अंदर जो मसाइल के अज्जा हैं। फला यकून जुज अन अला हिदतिन, तो फिर ये अलहदा जुज ना होगा, फिर तो ये उन्हीं मसाइल में दाखिल हो गया। अलकलिमा को अलहदा शुमार क्यों करते हो? अलकलिमा तो कहां आ गया था? मसाइल के अंदर आ गया। जब मसाइल में आया, जब ये मसाइल का जूस है तो इलम का भी जूस हुआ, जब इलम का जूस है तो फिर इसको मसाइल से अलहदा क्यों जिक्र करते हो? ये तो कहां आ गया? मसाइल ही के अंदर आ गया। इश्काल समझ में आ रहा है। यह माना है फला यकून जूस अन अला हिदतिन, तो ये अलहदा जूस तो ना हुआ, यह तो मसाइल ही के अंदर दाखिल है। वसानी, और दूसरी सूरत, अगर मौजू से क्या मुराद हो, मौजू की तारीख मुराद लें, तो कहते हैं वसानी मीनल मबादी तसवुरियती, वो तो मबादी तसवुरिया में दाह में से है। भाई वो तो किस में से है? भाई अगर मौजू की तारीफ मुराद लेते हैं, कहने वाले का मतलब यह था कि ये जो मौजू की तारीफ होती है वो इस इलम का जुज होती है जी। वो इस इलम का जुज होती है, जैसे अलकलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमाना मुफ्रदिन, ये जो कलिमा की तारीफ है, कहने वाले का मतलब अगर ये है कि ये जो तारीफ है ये क्या है, इस इल्मे नहु का जुज है, तो भाई ये तो मबादी तसव्वुरिया में दाखिल हो गई। वो मबादी तसव्वुरिया में क्या जिक्र होता था? मौजूआत की तारीफ, उनके अज्जा की तारीफ और उनके आराज की तारीफ। तो मबादी तसव्वुरिया में उन मौजूआत की तारीफ आ गई, वो तो मबादी के अंदर दाखिल हो गए, फिर इनको अलहदा क्यों जिक्र किया? तीन चीजें हैं ना इलम के अज्जा, मौजूआत मबादी और मसाइल। तो ये मौजूआत या तो मसाइल के अंदर दाखिल हो गए पहली सूरत में, दूसरी सूरत में किसके अंदर आ गए? मबादी की। अगर ये तारीफ मुराद है तो मबादी के अंदर आ गई, तो फिर इनको अलहदा क्यों जिक्र किया? तीसरी सूरत वसालिसु मिनल मबादी तस्दीकियती, तीसरी सूरत में ये मबादी तस्दीकिया में से है। किस में से? क्या माना? तीसरी चीज क्या जिक्र थी? मौजू से या तो नफ्स मौजू मुराद है, या उसकी तारीफ मुराद है, या उसके वजूद की तस्दीक मुराद है, या तो उसके वजूद की तस्दीक मुराद है इनके, कि ये मौजू का जूस होते हैं। तो कहते हैं भाई वो तो मबादी तस्दीकिया में दाखिल हो गया जी। किसके अंदर? कलिमा का वजूद है, कलिमा एक चीज है, पहले वजूद साबित करते हैं, फिर उसके बाद उससे बहसें करते हैं कि ये मौरब मबनी वगैरह होता है, इस पर एराब आते हैं तफसीलात। तो पहले वजूद के बारे में जो तस्दीक होगी वो, और वजूद की तस्दीक अगर मुराद है वो तो मबादी तस्दीकिया में दाखिल हो गई। तस्दीक है ना, क्या है? तो तस्दीक है, तो ये मबादी तसव्वुरिया में दाखिल होगी या मबादी तस्दीकिया में? तो ये मबादी तस्दीकिया में दाखिल हो गई, तो फिर इसको अलहदा क्यों जिक्र किया? वो मबादी में चली गई। तो गोया यूं कहो ना, उलूम की अज्जा दो हैं, मबादी या मसाइल, मौजूआत या मसाइल में दाखिल या मबादी में दाखिल है। इश्काल समझ में आ रहा है। तो कहते हैं वसालिसु मिनल मबादी तस्दीकियती, और तीसरी चीज जो है यानी तस्दीक भी वजूदी ही, ये मबादी तस्दीकिया में से है। फला यकून जुज अन अला हिदतिन, तो ये अलहदा जुज ना हुआ, फिर इसको अलहदा क्यों शुमार किया? वर्राबिउ मिन मुकद्दिमाति शुरूई, जी चौथी सूरत क्या थी? तस्दीक भी मौजूईयती ही, कौन सी तस्दीक जिसमें क्या जिक्र होता है कि ये इस इलम का मौजू है, ये इस इलम का मौजू है। और आपको बताया था कि मबादी के दो माना हैं, एक ये वाले मबादी जो यहां जिक्र हैं और एक दूसरा माना है मबादी का जो किसने किया है अल्लामा इब्ने हाजी। वो क्या फरमाते हैं मबादी किसका नाम, कुछ इब्तिदाई बातें हैं और कुछ मुकदमात होते हैं, और मुकदमात कौन से हैं जिसमें उस इलम की तारीफ मौजू और गरजो गायत जिक्र होती है, और वो किस लिए जिक्र किए जाते हैं वो मुकदमात, ताकि तालिब इलम उस फन को अला वजहिल बसीरा शुरू कर सके, बसीरत के तरीके पर और शौक के साथ उसको शुरू करे, बसीरत और मालूम हुआ इसके बगैर भी इलम समझ में आ जाएगा लेकिन पूरी बसीरत शुरू में नहीं होगी और पूरा शौक नहीं हुआ। तो ये उन मुकदमात ही शुरू के अंदर, और मैंने आपको बतलाया था कि जो तारीफ मौजू और गरज व गायत जिन मुकदमात में जिक्र किए जाते हैं ये उस इलम से खारिज होते हैं। क्या होते हैं वो कजिए जिनमें यह जिक्र होता है कि इल्म मंतिक की यह तारीफ है, जिसमें यह जिक्र होता है कि इल्म मंतिक का यह मौजू है, जिसमें यह जिक्र होता है कि इसमें इल्म मंतिक के ये मकासिद ये गाया है, तीन चीजें हैं ना, तारीफ मौजू और गरज व गायत। तो वो मुकदमे जिनके अंदर ये तीन चीजें जिक्र होती हैं, तीन चीजें जिक्र होती हैं, तो वो तो उस इलम से खारिज हैं भाई। तो यहां इन्होंने चौथी सूरत क्या जिक्र की, तस्दीक भी मौजूयत ही उस चीज के उस इलम का मौजू होने की तस्दीक। तो वो तो उन मुकदमात में से था जिनमें जिन पर इलम को अला वजहिल बसीरत और अला फर्ति रगबत शुरू करना मौकूफ था, यानी इलम से खारिज थे। क्या थे? तो इस सूरत में तो ये उन मुकदमात में दाखिल हो गया, और जब उन मुकदमात में दाखिल है फिर तो ये इलम से खारिज है, जब इलम से खारिज है तो इसको इलम का जुज कैसे करार दे दिया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वर्राबिउ मिन मुकदमात शुरूई, और चौथी चीज यानी तस्दीक भी मौजूयत ही, वो तो मिन मुकदमात शुरूई, वो किसमें से है, मुकदमात शुरू के जो मुकदमात है उनमें से है। फला यकून जुज अन, फिर तो ये सोलम का जुज ही नहीं होगा भाई। तो हर सूरत पर एतराज होता है। आपने क्या कहा कि मौजू क्या होता है, उस इलम का जुज। आपकी इससे मुराद या तो नफ्से मौजू है, या मौजू की तारीफ है, या उसके वजूद की तस्दीक है, या उसकी मौजूइयत की तस्दीक है। अगर नफ्से मौजू मुराद लेते हैं तो यह तो मसाइल के अंदर दाखिल है, इसको अलहदा जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर आप इससे उसकी तारीफ मुराद लेते हैं कि वो इस इलम का जुज होती है, तो भाई तारीफ वो तो मबादी तसव्वुरिया में आ गई थी, लिहाजा इसको अलहदा शुमार नहीं करना चाहिए। और अगर आप उसकी तस्दीक भी वजूद ही की बात करते हैं कि वो तस्दीक जिसमें उसके वजूद का जिक्र होता है, तो वो तो इसके मबादी तस्दीकिया में शामिल है, लिहाजा इसको अलहदा जिक्र नहीं करना चाहिए था। तो इन तीन सूरतों में यह जो मौजू है यह तो इलम के अंदर दाखिल है, मबादी में या मसाइल, लिहाजा अलहदा नहीं शुमार करना चाहिए। और चौथी सूरत में तो यह किस में से है, अगर इसके मौजूइयत की तस्दीक मुराद है तो मौजूइयत की तस्दीक तो मुकदमात शुरू में से है, शुरू के जो मुकदमात हैं उनमें दाखिल है, फिर इसको आप जुज कैसे करार दे देते हो। इश्काल समझ में आ गया। तो यह एतराज हुआ भाई। एतराज क्या हुआ कि मौजू जो होता है इलम के अज्जा में से होता है, या तो उसकी मुराद क्या होगी, नफ्स मौजू या तारीफ मौजू या तस्दीक भी वजूदी ही या तस्दीक भी मौजूइयती ही, और चारों सूरतों पर एतराज होता है कि इसको अलहदा जुज शुमार ही नहीं करना चाहिए। तीन सूरतों में तो अलहदा जुज क्यों शुमार किया, और चौथी सूरत में तो यह जुज ही नहीं बनता, इसको जुज कैसे शुमार कर लिया। बात समझ में आ गई। तो अब जवाब देंगे। कहते हैं वयुमकिनुल जवाब भी इख्तियारी कुल मिन शुकूकिल अरबाती, और मुमकिन है जवाब देना इन चार शिकों में से, यानी चार अज्जा में से हर एक को इख्तियार करते हुए, हर एक को इख्तियार करते हुए जवाब दिया जा सकता है। मौजू से अगर नफ्से मौजू मुराद लें तो भी जवाब दिया जा सकता है, अगर तारीफ मौजू मुराद लें तो भी जवाब दिया जा सकता है, तस्दीक भी वजूद ही मुराद हो तो भी जवाब दिया जा सकता है, और तस्दीक भी मौजूयत ही हो तब भी जवाब दिया जा सकता है। तो कहते हैं वयुमकिनुल जवाब भी इख्तियारी कुल मिन शुकूकिल अरबाती, शुकूक जमा है शिक की, भाई शिक जुज को कहते हैं, टुकड़े हिस्से को, मुराद ये चार एहतमालात हैं भाई, मुराद चार एहतमालात हैं, और मुमकिन है जवाब देना इन चार एहतमालात में से हर एक को इख्तियार करते हुए। अम्मा अलल अव्वली, तो पहली एहतमाल पर या पहली शिक पर, फयुकाल, उपस यूं कहा जाएगा कि इन न नफ्स अल मौजूई व इन इन दराजा फिल मसाइली, के नफ्स मौजू अगरचे वो दाखिल है मसाइल के अंदर, नफ्स मौजू अगरचे मसाइल के अंदर दाखिल है क्योंकि मसाइल का मौजू बनता है, लेकिन नहुल शिद्दतिल एतेना बिही, एतेना लफ्ज है मेरी किताब में एतबार है ये दुरुस्त नहीं भाई, एतेना होना चाहिए, लिशिद्दतिल एतेना बिही, एतेना का माना है किसी चीज को अहमियत देना, किसी चीज को हासिल जवाब सुन लीजिए, कहना यह चाहते हैं कि भाई आपने क्या कहा नफ्स मौजू अगर मुराद दें तो वो किसके अंदर दाखिल है, मसाइल के अंदर दाखिल है, इसको अलहदा जूस क्यों शुमार किया, तो हम कहते हैं हां आपकी बात ठीक है ये मसाइल के अंदर दाखिल है, लेकिन चूंकि इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है इसलिए इसको अलहदा जूस शुमार किया, इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, इलम के तमाम मसाइल इसी चीज के गिर्द घूमते हैं, इसी के बारे में बहस की जाती है, लिहाजा इसको बहुत ज्यादा अहमियत देने की वजह से अलहदा जुज शुमार किया, वरना वाकई ये मसाइल के अंदर दाखिल था भाई। तो कहते हैं फयुकालो इन नफ्स अल मौजूई व इन इन दरजा फिल मसाइली, के नफ्स मौजू अगरचे वो दाखिल है मसाइल के अंदर, लाकिन नहू लिशिद्दत लिएतेनाई बिही, लेकिन इसके बहुत ज्यादा अहमियत होने की वजह से, मिन हैसु भाई किस तरह, बहुत ज्यादा अहमियत किस तरह है इसकी, कहते हैं मिन हैसु अन्नल मकसूद मिनल इल्म मारिफतु अहवालिही वल बहसु अनहा, ये इस हैसियत से कि इलम में जो मकसूद होता है वो इसी के अहवाल की मारिफत, इसी के अहवाल को जानना मकसूद होता है, वल बहसु अनहा, और इलम के अंदर जो मकसूद होता है वो इसी से बहस करना है, इलम में क्योंकि इलम के तमाम मसाइल इसी के गिर्द घूमते हैं, इसी के अहवाल को जाना जाता है और उन्हीं के बारे में बहस की जाती है, तो उद्दा जुज अन अलाहिदतन, तो इसको अलहदा जुज शुमार किया गया। जवाब समझ में आया? औ युकालु, या यूं कहा जा सकता है कि इन अल मसाइला, यहां से आगे दूसरा जवाब देंगे कि यह जवाब दिया जा सकता है कि आपने क्या कहा कि नफ्स मौजू किसके अंदर दाखिल, मसाइल के अंदर, क्योंकि यह मसाइल का मौजू बनता है, तो आपको जवाब देंगे कि यह जवाब दिया जा सकता है कि जो मसाइल जिक्र होते हैं यह मसाइल कजियों का नाम नहीं है। तो मुसन्निफ ने तो क्या बतलाया, मसाइल किसका नाम है, वो कजिये हैं जो उस इलम में मतलूब होते हैं, लेकिन मुहक्किक़े दवानी फरमाते हैं, मुहक्किक़े दवानी फरमाते हैं कि इलम के जो मसाइल होते हैं वो उनके महमूलात होते हैं, वो जो कजिये जिक्र हुए मसाइल के अंदर उन कजियों के कुछ मौजूआत हैं और कुछ महमूलात हैं, तो इलम के जो मसाइल होते हैं वो सिर्फ वो महमूलात होते हैं, वो सिर्फ, तो मौजूआत मालूम हुआ मसाइल में दाखिल ही नहीं, जब दाखिल ही नहीं है तो मौजू भी इन्हीं में से था तो वो भी मसाइल के अंदर दाखिल नहीं, जब मसाइल में दाखिल नहीं इसलिए उसको अलहदा शुमार करना पड़ा भाई। जवाब समझ में आया? तो औ युकालु, या ये कहा जाएगा कि इन्नल मसाइल लैसत हिया मजमूउल मौजूआत वल महमूलात वन निसबी, के मसाइल जो है वो मौजूआत महमूलात और निस्बतों का मजमूआ नहीं है। कजिया तो मजमूआ होता है ना, किस चीज का, मौजू भी महमूल भी और उसके उन दोनों के दरमियान निस्बत भी, तो इन तीनों के मजमूआ जो है वो कजिया होता है, तो वो सारे इलम के मसाइल नहीं होते बल्कि सिर्फ क्या चीज, इलम के मसाइल हैं उन कजियों के जो महमूलात हैं वो मसाइल हैं, उन कजियों के मौजूआत और निस्बतें वो उस इलम के मसाइल नहीं हैं। तो इन्नल मसाइल लैसत हिया मजमूउल मौजूआत वल महमूलात वन निसबी, निसब जमा है निस्बत की भाई, कि मसाइल जो हैं ये मौजूआत महमूलात और निस्बतों का मजमूआ नहीं है, बल इल महमूलात उल मनसूबतु इलल मौजूआत, बल्कि मसाइल वो महमूलात होते हैं, अल मनसूबतु इलल मौजूआत, जो मनसूब होते हैं उन मौजूआत की तरफ, वो महमूलात सिर्फ मसाइल हैं। قال المحقق الدواني, محقق دواني فرماتے ہیں। मुहक्किक दवानी भाई ये बहुत बड़े मंतिकी और फलसफी गुजरे हैं और ये 918 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। आजकल क्या है, आजकल 1442 हिजरी चल रही है, तो ये मुहक्किक दवानी जो हैं इनका इंतकाल हुआ है 918 हिजरी में, और इनका नाम जलालुद्दीन है भाई, जलालुद्दीन दवानी भाई, और ये शाफईयुल मसलक हैं, और इन्होंने खुद भी इस मतन की शरह लिखी है, और उसका नाम है मुल्ला जलाल भाई। मुल्ला जलाल इन्हीं के नाम से मशहूर है, और वो इन्होंने इस मतन की शरह लिखी है और मदारिस में पढ़ी और पढ़ाई जाती है भाई। قال المحقق الدواني محقق دواني فرماتے ہیں فی حاشیۃ المطالع مطالع کا جو حاشیہ لکھا انہوں نے اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں مطالع کتاب کا نام ہے تو مطالع کتاب کے حاشیے میں وہ فرماتے ہیں المسائل هی المحمولات المثبتۃ بالدلیل کہ مسائل جو ہیں وہ محمولات ہوتے ہیں جو ثابت کیے جاتے ہیں دلیل کے ذریعے مسائل صرف کس کا نام کسی علم کے مسائل وہ موضوعات محمولات اور نسبتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ صرف کس کا نام ہے محمولات کا نام وہ محمولات المثبتت بالدلیل جو کس کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں دلیل کے ذریعے ثابت کیے جاتے ہیں آگے شارح فرماتے ہیں وفیہ نظر محقق دوانی کے اس قول میں نظر ہے اشکال ہے आपको आगे बताएंगे कि इश्काल ये कि मुसन्निफ के कौल से इसकी मुनासिबत नहीं बनती। मुसन्निफ ने तो क्या बतलाया कि मसाइल किसका नाम है, कजाया का नाम है, और कजिए के अंदर मौजू भी होता है, महमूल भी होता है और निस्बत भी होती है, तो ये मुसन्निफ के कौल के से इसकी मुनासिबत और मुताबकत नहीं है, लिहाजा ये जवाब यहां नहीं चल सकता भाई। जिन्होंने मौजूआत को उलूम का जुज करार दिया, तवज्जो है, जिन्होंने मौजूआत को उलूम का जुज करार दिया उससे या तो उनकी मुराद क्या है, नफ्स मौजू या मौजू की तारीफ या उसके वजूद की तस्दीक या उसके मौजूइयत की तस्दीक। अगर नफ्स मौजू मुराद लें तो वो किसके अंदर दाखिल है, वह मसाइल के अंदर दाखिल है। जब मसाइल के अंदर दाखिल है तो इसको अलहदा शुमार करने की जरूरत नहीं। तो उसका एक जवाब क्या दिया कि हां यह मसाइल के अंदर दाखिल तो है लेकिन शदीद अहमियत होने की वजह से इसको क्या कर लिया, अलहदा शुमार कर लिया। और दूसरा जवाब क्या दिया कि मुहक्किक दवानी क्या फरमाते हैं कि किसी इलम के मसाइल वो मौजूआत महमूलात और नस्बतों का मजमुआ नहीं होते बल्कि सिर्फ क्या चीजें होती हैं, महमूलात। जब महमूलात सिर्फ मसाइल हैं तो मौजूआत तो मसाइल के अंदर दाखिल ही नहीं, जब वो दाखिल नहीं तो इसलिए उसको क्या कर दिया, अलहदा जिक्र किया। लेकिन यह जवाब यहां नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि मुसन्निफ ने क्या बतलाया, मसाइल किसका नाम है, कजियों का नाम है, और कजिया किस चीज से मुरक्कब होता है, मौजू महमूल और नस्बत से। तो लिहाजा मौजू तो मसाइल के अंदर दाखिल हो गया, मुसन्निफ ने जो बात की उसके मुताबिक आप मौजू को मसाइल से नहीं निकाल सकते। और जब यह मसाइल के अंदर दाखिल है तो एतराज उसी तरह रहता है कि फिर इसको अलहदा जिक्र क्यों किया। तो कहते हैं वफी ही नजर उन, और मुहक्किक दवानी के इस कौल में नजर है, इश्काल है। फइन्नहु ला युलायिमु ज़ाहिर कौलिल मुसन्निफ, इसलिए क्योंकि यह मुनासिब नहीं है मुसन्निफ के जाहिर कौल से। और जाहिर कौल क्या है मुसन्निफ का, उन्होंने फरमाया वल मसाइलु हिया कजा या कजा व मौजूआतुहा कजा व महमूलातुहा कजा। ये सारे मुसन्निफ की इबारत नकल कर रहे हैं कि मुसन्निफ का ये जो कौल आया था ऊपर कि इल्म के जो मसाइल हैं हिया कजा या कजा वो ऐसे कजिए होते हैं, व मौजूआत उहा कजा और उनके मौजूआत ऐसे होते हैं, व महमूलात उहा कजा और उनके महमूलात ऐसे होते हैं। तो इससे तो पता चल रहा है कि मौजूआत और महमूलात दोनों मसाइल के अंदर दाखिल हैं। वह ऐजन और नीज और नीस, यानी ये दूसरा एतराज भी होता है। दूसरा एतराज क्या, इधर देखिए, अगर आपके कहने का ये मतलब है कि मौजू को इलम का जुज करार दिया क्योंकि ये मसाइल के अंदर दाखिल ही नहीं है, अलामा दवानी के अगर जवाब को अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि ये मसाइल के अंदर दाखिल ही नहीं है, क्योंकि मसाइल तो सिर्फ किसका नाम, महमूलात का नाम है, तो फिर तो इश्काल और भी ज्यादा हो जाएगा कि फिर तो उन मसाइल के जितने भी मौजूआत हैं उन सबको भी अलहदा जुज शुमार करना चाहिए। उन मसाइल के मौजूआत क्या क्या होते थे, पांच चीजें थी उन मसाइल के मौजूआत, क्या क्या, उस इलम का मौजू या उस मौजू की कोई किस्म या उसकी अरज़ जाती या इनमें से किसी से मुरक्कब। फिर तो वो चार पांच सूरतें बनती हैं, तो फिर तो उन सारों को भी क्या करार देना चाहिए, इलम के अज्जा करार देना चाहिए। सिर्फ मौजूए इलम को क्यों इलम का जुज करार दिया है, बाकी भी तो अज्जा बन गए, बाकी भी तो अज्जा हैं। बात समझ में आ गई। कहते हैं वह ऐजन और नीज फलौकान अल मसाइल नफ्सल महमूलात इल मनसूबती, अगर मसाइल वो नफ्से महमूलात हैं जिनकी निस्बत की जाती है, लवजब अद्दुसाइर इल मौजूआत इल मसाइल लती ही वरा अल मौजूइल इल्म जुज अन अला हिदतिन, तो वाजिब होगा, जरूरी होगा, अद्दुसाइर इल मौजूआत इल मसाइल, मसाइल के बाकी मौजूआत को शुमार करना, मसाइल के बाकी मौजूआत को शुमार करना वाजिब होगा। क्या शुमार करना, आखिर में आ रहा है जुज अन अलाहिदतिन, अलहदा जुज, उनको अलहदा जुज शुमार करना वाजिब होगा। मसाइल के बाकी मौजूआत, कौन से बाकी मौजूआत, अल्लती ही वरा मौजूइल इल्मी, वो जो मौजू इलम के अलावा हैं, मौजू इलम के अलावा। भाई मसाइल के मौजू क्या क्या चीजें थी, पांच चीजें थी ना, एक क्या था, मौजूए इलम, उसको तो आपने फिर इलम का जुज करार दे दिया, तो फिर बाकियों को भी क्या करार देना चाहिए, इलम का जुज करार देना चाहिए। तो तर्जमा फिर देख लें, कहते हैं वह ऐजन फलौकान अल मसाइल नफ्सल महमूलात इल मनसूबती, और नीस अगर मसाइल वो नफ्स महमूलात हैं जिनकी निस्बत की गई है, तो लवजबअद्दुसाइर इल मौजूआत इल मसाइल, तो वाजिब होगा शुमार करना मसाइल के बाकी मौजूआत भी, अल्लती ही वरा मौजूइल इल्मी, वो जो मौजूए इलम के अलावा हैं, वो जो मौजूए इलम के अलावा मसाइल के बाकी मौजूआत हैं, वाजिब होगा कि उनको भी शुमार किया जाए, जुज अन अलाहदतिन, अलहदा जुज। फतदब्बर, तो आप इसमें गौर कर लीजिए, आप इसमें गौर कर लीजिए। दो एतराज किए भाई, दो एतराज कि अल्लामा दवानी की बात यहां नहीं चल सकती, क्योंकि मुसन्निफ ने मसाइल जो है वो महमूलात को नहीं करार दिया, बल्कि किसको करार दिया, गजाया को करार दिया, और नीज अगर उन मसाइल के जो मौजूआत हैं वो मसाइल के अंदर दाखिल नहीं, तो वो जो तमाम मौजूआत हैं उनको इस इलम का अलहदा जुज शुमार करना चाहिए भाई, हालांकि उन बाकियों को तो अलहदा जुज शुमार नहीं किया। तो फतदब्बर के जरिए जवाब दिया जा सकता है कि भाई बाकी जितने भी मौजूआत हैं, मसाइल के जितने भी मौजूआत हैं, पांच किस्म के मौजूआत बनते थे ना, उनमें से एक तो था मौजूए इलम, बाकी चार में भी कहते हैं अगर आप गौर कर लें तो वो सब मौजूए इलम ही की तरफ लौटते हैं मौजूए, लिहाजा उनको अलहदा जुज शुमार करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये जो दूसरा एतराज किया कि नीज ये एतराज भी होता है कि आपने मौजूए इलम को अलहदा जुज शुमार किया है, तो मसाइल के जो बाकी मौजूआत हैं उनको भी क्या शुमार करना चाहिए, अलहदा जुज शुमार करना चाहिए। उसके जवाब की तरफ इशारा कर दिया कि हां इस एतराज का जवाब दिया जा सकता है, इस एतराज का कि बाकी चीजों को भी जुज शुमार करो अलहदा। कहते हैं भाई बाकी चीजें वो उसी मौजू इलम के अंदर दाखिल हैं, क्योंकि वो उसी मौजू की या नौ होगी, मसाइल का जो मौजूआत हैं। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो। इन्होंने क्या कहा कि अल्लामा दवानी ने क्या जिक्र किया है कि किसी इलम के मसाइल सिर्फ वो महमूलात होते हैं, मौजूआत नहीं, मौजूआत नहीं होते। कहते हैं लेकिन यह बात यहां नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि मुसन्निफ ने मसाइल महमूलात को नहीं करार दिया, किसको करार दिया है, कजाया को, और कजाया के अंदर मौजूआत भी होते हैं और महमूलात भी होते हैं, बल्कि बाकायदा मुसन्निफ ने आगे मौजूआत और महमूलात को अलहदा जिक्र भी किया कि ये मौजूआत होंगे और ये महमूलात होंगे। तो यहां अल्लामा दवानी की बात नहीं चल सकती, उन यानी उनकी बात लेकर जवाब नहीं दिया जा सकता। नीज बल्कि यहां दूसरा एतराज होता है कि उन मसाइल के मौजूआत कितनी किस्म के थे, पांच, उनमें से एक तो मौजूए इलम था, बाकी तो चार और चीजें थी, तो मौजूए इलम को तो आपने अलहदा जुज करार दे दिया, क्योंकि आपने क्या कहा यह मसाइल के अंदर दाखिल, लिहाजा इसलिए इसको अलहदा जुज शुमार किया। फिर तो बाकी चार चीजें जो हैं उनको भी क्या करना चाहिए, अलहदा जुज करार देना चाहिए। तो उसके जवाब की तरफ इशारा कर दिया कि बाकी चार चीजें भी वो मौजूए इलम से अलहदा नहीं है भाई, वो इसी के अंदर दाखिल हैं, लिहाजा यह एतराज आप नहीं कर सकते। यानी जो दूसरा एतराज किया इसका जवाब दिया जा सकता है। किस तरह जवाब दिया जा सकता है कि यह चीजें मौजू इलम से अलहदा नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी मौजूआत हैं या तो वह इसी मौजू इलम की नौ होगी या उसका कोई अरज जाती होगा या इस मौजू इलम या उसकी अरज जाती से मुरकब होगा या इस मौजू इलम की नौ और उसके अरज जाती से मुरकब, तो वह सारे किसके अंदर आ जाते हैं, मौजू इलम में आ जाते हैं। लिहाजा ये एतराज नहीं कर सकते कि उनको अलहदा जुज करार देना चाहिए, वह मौजू इलम के अंदर ही आ जाते हैं। तो फतदब्बर के जरिए इस जवाब की तरफ इशारा है। वह अम्मा अलसानी, दूसरी सूरत क्या थी कि इन्होंने क्या कहा, मौजू जुज है इलम का, इससे मुराद या तो नफ्स मौजू है या मौजू की तारीफ है या तस्दीक भी वजूदी ही है या तस्दीक भी मौजूयती ही। नफ्स मौजू का हमने जवाब दे दिया, उसको क्यों अलहदा जिक्र किया, अगरचे वह मसाइल में दाखिल था लेकिन क्यों अलहदा जिक्र किया, उसकी अहमियत की वजह से। दूसरे और तीसरे का भी यही जवाब है। अगर तारीफ मुराद लें, मौजू की तारीफ, वो किस में दाखिल, मबादिए तस्दीकिया में, लेकिन अहमियत की वजह से उसको अलहदा जिक्र किया। और तीसरी सूरत क्या मुराद, तस्दीक भी वजूदी ही, वो किसके अंदर दाखिल, मबादिए तस्दीकिया में दाखिल है लेकिन फिर भी उसको अलहदा जिक्र किया, किस वजह से, उसकी अहमियत की वजह से। तो कहते हैं वह अम्मा अलसानी फयुकाल, तो दूसरी शिक जो है उसमें कहा जाएगा कि इन तारीफ अल मौजूई व इनकान मुंदरिजन फिल मबादी तसवुरियती, कि मौजू की जो तारीफ है अगरचे वो दाखिल है मबादी तसवुरिया में, लाकिन उद्द जुज अन अलाहिदतिन लि मजीद अल इतिनाई बिही कमा सबका, लेकिन इसको अलहदा जुज शुमार किया गया इसकी ज्यादा अहमियत देने की वजह से, कमा सबका जैसे बात गुजर गई, जैसे कि बात पहले गुजर गई, जैसे हमने पहले बयान कर दिया। तो यह भी एतना इबिही लफ्स है भाई, इसकी भी इसलाह कर लें, मेरी किताब में लि मजीद इल एतबारी भी ही है, यह दुरुस्त नहीं है भाई, लि मजीद इल एतना इबिही। व अम्मा अल सालिसी, और बाकी तीसरी सूरत जो है, कौन सी तीसरी सूरत, के तस्दीक भी वजूदी ही जो है, या तो इससे मुराद क्या है, हाँ इन्होंने क्या कहा था कि मौजू जो है वो इलम का जुज होता है, या तो इससे मुराद नफ्स मौजू है या मौजू की तारीफ है या तस्दीक भी वजूदी ही है, अब उसका जवाब दे रहे हैं। वह अम्मा अला सालिसी, और बाकी तीसरी सूरत जो है, तीसरी शिक जो है, उस पर फयुकाल यूं कहा जाएगा बिमिस्ल मा मर्रा, उसी के मिसल जो गुजर गया, तस्दीक भी वजूदी ही अगरचे मबादिया तस्दीकिया में दाखिल है लेकिन इसको अलहदा शुमार किया गया उसकी अहमियत की वजह से। बात समझ में आ गई, तस्दीक भी वजूदी ही, उसके वजूद की तस्दीक भाई, मबादिया तस्दीकिया में दाखिल है ना, तीसरी बात है। तीसरी बात है, देखो तीसरी चीज क्या थी कि मौजू से क्या मुराद है, तस्दीक भी वजूदी ही, उसके वजूद की तस्दीक, यानी वो तस्दीक जिसमें यह जिक्र होता है कि इसका वजूद है, ये चीज, ये मौजू मौजूद है, तो अगर वो मुराद लें तो वो किस में दाखिल, मबादिये तस्दीकिया में, तो इसको अलहदा जुज क्यों शुमार किया, तो उसका भी यही जवाब है जो पहले दो में गुजर गया कि हां वो मबादिये तस्दीकिया में दाखिल है लेकिन अहमियत की वजह से उसको अलहदा जिक्र किया। तो कहते हैं फयुकाल, तो उसमें भी कहा जाएगा बिमिस्ल मा मर्रा, उसी के मिसल जो गुजर गया, यानी पहले और दूसरे जवाब में। औ युकाल, या यूं कहा जाएगा, ये दूसरा जवाब देने लगे हैं, तीसरी शिक का दूसरा जवाब देने लगे हैं। पहला जवाब क्या कि मबादी तस्दीकिया में दाखिल था जी। इसको अलहदा क्यों शुमार किया, इसकी अहमियत की वजह से। अब दूसरा जवाब देंगे कि नहीं भाई, ये मबादी तस्दीकिया में दाखिल ही नहीं है, मबादी तस्दीकिया में दाखिल ही नहीं है, और जब मबादी तस्दीकिया में नहीं दाखिल तो इसको अलहदा शुमार करना चाहिए भाई। बात समझ में आ गई। अव युकालू, या यूं कहा जाएगा कि बि अन्ना अद्दत तस्दीक बि वजूदिल मौजू मिनल मबादी तस्दीकियती कमा नुकिला अनि शेख तसामुहुन, के शुमार करना, यूं कहा जाएगा बि अन्ना अद्दत तस्दीक, के शुमार करना वो जो तस्दीक है वजूद मौजू की, उसको शुमार करना मिनल मबादी तस्दीकियती मबादी तस्दीकिया में से, कमा नुकिला अनि शेख, जैसे कि मनकूल है शेख से, यानी शेख बुअली सीना से, तसामुहुन, ये तसामुह है, ये चशम पोशी है, शेख से क्या मनकूल है, बाजों ने नकल किया कि शेख बुअली सीना क्या फरमाते हैं, कि ये जो तस्दीक भी वजूद इल मौजू जो है ये किसके अंदर दाखिल है, मबादिये तस्दीकिया। तो इसका मबादिये तस्दीकिया में दाखिल होना, इसको जो शेख से नकल किया गया है, ये किस पर मबनी है? तसामुह पर मबनी है भाई। यानी यानी ये दुरुस्त नहीं है भाई, तसामुह पर मबनी है। फाइनल मबादिया तस्दीकिया ही अल कजाय अल्लती तथा अल्लफ मिन्हा कियासातुल इल्मी, इसलिए क्योंकि मबादिया तस्दीकिया तो वो कजाया है अल्लती तथा अल्लफ मिन्हा। इधर देखिए मबादिया तस्दीकिया, इन्होंने ऊपर मतन में आपको बताया था कि इलम तीन चीजों से मुरक्कब होता है, मौजूआत मबादी और मसाइल। और मबादी क्या होते हैं? वो दो किस्म के हैं, मबादिया तसव्वुरिया और मबादिया तस्दीकिया। मबादिया तसव्वुरिया क्या होते हैं? उन मौजूआत और उनके अज्जा और उनके आराज की तारीफें, उनकी तारीफें जो हैं ये मबादिया तसव्वुरिया हैं। और मबादिया तस्दीकिया क्या चीज है? हां, कुछ ऐसे कजिये होते हैं जिन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं। क्या माना मौकूफ होते हैं? यानी उनसे इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। तो वो कुछ कजिये हैं और वो बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी हो सकते हैं। तो मालूम हुआ मबादिया तस्दीकिया किस चीज का नाम, मबादिया तस्दीकिया किस चीज का नाम? अभी बताया मैंने आपको, कुछ कजिये हैं, कुछ जिनसे इस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। तवज्जो है, जिनसे इस इलम के दलाइल, तो मबादिया तस्दीकिया तो वो उन कजियों का नाम है जिससे इस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। उनमें यह तस्दीक भी वजूद इल मौजू तो दाखिल नहीं है, उनमें यह तो नहीं जिक्र किया जाता कि इस चीज का वजूद है, यह तो उनके अंदर दाखिल ही नहीं है। वो तो वो तस्दीकात हैं जो क्या बनेंगी, जिनसे उस इलम के दलाइल बनेंगे भाई। तो तस्दीक भी वजूद इल मौजू वो उसको मबादिया तस्दीकिया में शुमार करना सही नहीं, वो उसके अंदर दाखिल ही नहीं है भाई। ये देखिए औ युकालू, या ये कहा जाएगा कि भी अन्न अद्दत तस्दीकी भी वजूद इल मौजूई मिनल मबादी तस्दीकियती, कि शुमार करना वो जो तस्दीक है वजूद मौजू की, उसको शुमार करना मबादिय तस्दीकिया में से, जैसे कि मनकूल है शेख से तसामुहुन, ये क्या है? तसामुह है यानी चशम पोशी है, यूं या यूं कहें कि ये भूल हुई है, गलती हुई है। फ़इन्नल मबादिया तस्दीकिया था, इसलिए क्योंकि मबादिया तस्दीकिया जो हैं हियल कज़ाया, वो तो ऐसे कजिये हैं, अल्लती तथा अल्लफ मिन्हा कियासातुल इल्मी, के जिनसे मुरक्कब होते हैं इलम के दलाइल। वनस्सा अला ज़ालिकल अल्लामतु फी शरहिल कुल्लियाती, और तसरीह की है, नस्सा क्या माना? तसरी यानी साफ लफ्जों में जिक्र किया है। वनस्सा अला ज़ालिका, और इस बात पर तसरीह की है, अल अल्लामतु फी शरहिल कुल्लियाती, अल्लामा ने कुल्लियात की शरा के अंदर। व अय्यदहु बिकलामि शेख अयज़न, और इसकी ताईद की है कलाम शेख के जरिए भी, कलाम शेख के जरिए भी इसकी ताईद की है भाई। ये अल्लामा जिक्र किया, इन्होंने नाम नहीं बतलाया, नाम नहीं बतलाया, इससे कौन मुराद है भाई? शायद शायद इससे मुराद इमाम राजी हो भाई। कौन मुराद हो? इमाम राजी, क्योंकि उनकी भी शरहुल कुल्लियात है भाई, तसनीफ कुल्लियात की शरह उन्होंने भी की है। लेकिन ज्यादा गालिब गुमान यही है कि इससे कुतुबुद्दीन शिराजी मुराद है भाई। कौन मुराद है? कुतुबुद्दीन शिराजी मुराद हैं, और ये बहुत बड़े मंतिकी और फलसफी गुजरे हैं। इनका इंतकाल हुआ है 710 हिजरी में, 710। मुहक्किक दवानी का इंतकाल कब हुआ है? 918 हिजरी में, यानी ये उनसे बहुत मुअख्खर हैं। तो ये कुतुबुद्दीन शिराजी बहुत बड़े मंतिकी गुजरे हैं, और ये शागिर्द हैं तूसी के, मुहक्किके तूसी के शागिर्द हैं भाई। तो 710 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, और इनकी भी शरह कुल्लियात किताब है भाई। तो गालिब गुमान यही है, यही मुराद हैं। अल्लामा से कौन मुराद हैं? कुतुबुद्दीन शिराजी भाई। तो कहते हैं वनस अला ज़ालिकल अल्लामतु फी शरहिल कुल्लियात, और अल्लामा ने, अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराजी ने भी इसकी तसरीह की है, फी शरहिल कुल्लियाति, अपनी किताब शरह कुल्लियात के अंदर। व अय्यदहु बिकलामि शेख अयज़न, और उन्होंने इसकी ताईद की है कलाम शेख के जरिए भी। अल्लामा ने क्या जिक्र किया शरहुल कुल्लियात के अंदर? के जो मबादिय तस्दीकिया होते हैं, ये उन कजियों का नाम है जिनसे इस इलम के दलाइल बनते हैं, इससे इस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। और फिर इसकी ताईद में शेख अबू अली इब्ने सीना का कौल भी जिक्र किया कि वो भी यही फरमाते हैं, उनके कौल को भी नकल कर दिया है। बात समझ में आ गई? क्या बात हुई? क्या अल्लामा ने शरहुल कुलियात में क्या जिक्र किया है कि मबादी तस्दीकिया वो कजिया हैं जिनसे उस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। मालूम हुआ तस्दीक भी वजूद ही इसके अंदर दाखिल नहीं। और नीज अल्लामा ने शरहुल कुलियात में अपने इस दावे की ताइद में किसका कलाम जिक्र किया? शेख अबू अली सीना का भी कलाम जिक्र किया। मालूम हुआ वो जो किसी और ने शेख अबू अली सीना से नकल किया है वो उनसे भूल हुई है, गलती से उनकी तरफ निस्बत कर दी है। शेख का भी यही, शेख की भी यही राय है कि ये मबादी तस्दीकिया के अंदर दाखिल नहीं है। कौन सी तस्दीक नहीं दाखिल? तस्दीक भी वजूदिल मौजू जो है वो मबादी तस्दीकिया में दाखिल नहीं। فقول المصنف پس مصنف کا قول يبتني عليها قياسات العلم ان پر بنیاد ہوتی ہے علم کے دلائل کی اوپر متن میں آیا تھا بھئی يبتني عليها قياسات العلم ان پر بنیاد ہوتی ہے علم کی دلائل کی تعریف او تفسیر بالاعم یہ تعریف بالاعم ہے یا تفسیر بالاعم ہے بالاعم على سبیل البدل دونوں سے جڑے گا तारीफ बिल आम या तफसीर बिल आम है। भाई आपने पढ़ा था एक तारीफ हकीकी है एक तारीफ लफ्जी है। तारीफ हकीकी के जरिए तहसील सूरत होती है और तारीफ लफ्जी के जरिए तायीन सूरत होती है। बात जहन में आई कि नहीं आई? आपने पढ़ा था कि एक तारीफ हकीकी है एक तारीफ लफ्जी है। तारीफ हकीकी आपको एक चीज का तस्वूर हासिल नहीं, आपको एक चीज की पहचान नहीं है, तो फिर वो तारीफ करके उसकी पहचान आपको करवाते हैं। मसलन तालिब इलम को पता नहीं होता कि अल कलिमा किसे कहते हैं, उस कलिमा की तारीफ की जाती है कि वो लफ्ज होता है और उसमें वजह होती है, वो वजह होता है किसी माना के लिए और वो मुफरद होता है। ये तीन चार तस्वूरात मिलाए इससे तालिब इलम को कलिमा का तस्वूर हासिल हो गया। उसको पहले कलिमा का तस्वूर हासिल था ही नहीं, ये तारीफ की तो अब उसको पता चल गया अच्छा कलिमा इस चीज को कहते हैं। यह है तारीफ हकीकी। देखो इसमें एक तस्वूर हासिल हुआ, यह तस्वूर पहले हासिल नहीं था। तो तारीफ हकीकी के जरिए तहसील सूरत होती है, तहसील सूरत होती है यानी तहसील तसव्वुर होता है। बात समझ में आ रही? जबकि तफसीर लफ्जी के जरिए तायीन सूरत होती है। सूरत कह लो या तसव्वुर कह लो एक ही बात है। एक सूरत कलिमा की सूरत यानी उसकी पहचान आपको पहले हासिल नहीं थी, तारीफ से हासिल हो गई। और एक है कि आपको एक सूरत या एक तसव्वुर पहले से हासिल है। मसलन किताब में लफ्ज आया अल गजनफर। अब तालिब इलम परेशान है कि गजनफर किसको कहते हैं और गजनफर शेर को कहते हैं। किसको? शेर। तो दूसरा साथी उसको बताता है अल गजनफर असदुन, गजनफर शेर है। अब देखो शेर की उसको पहले से पहचान थी लेकिन यह नहीं था पता कि गजनफर इस चीज को कहते हैं। तो अब जब तालिब इलम ने उसको बताया कि अल गजनफर असदुन तो क्या कोई नया तस्वूर उसको हासिल हुआ? नहीं, वही जहन में जो शेर की सूरत थी उसमें तायीन करके बता दिया कि ये वाला जो तसव्वुर है इसको गजनफर कहते हैं, ये वाली जो सूरत है इसको क्या कहते हैं? गजनफर। तो तारीफ हकीकी में तहसील सूरत होती है और तारीफ लफ्जी में तायीन सूरत होती है। शेर की सूरत उसको पहले से हासिल थी, जहन में थी लेकिन पता नहीं था कि शेर का नाम असद के साथ साथ गजनफर भी है। भाई ये उसको पता नहीं था। फर्क समझ में आया? तो तारीफ हकीकी में क्या होता है? तहसील सूरत, और तारीफ लफ्जी में तायीन सूरत होती है कि यह सूरत है। और फिर याद रखना कहते हैं जो मुसन्निफ ने यहां कहा ना ऊपर मतन में कि मुकदमात जो हैं वो कजिए हैं जो बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी, और यह बतनी अलैहा कियासातुल इल्मी उन पर इलम के दलाइल की बुनियाद होती है, उन पर इलम के दलाइल की बुनियाद होती है। कहते हैं यह तारीफ बिल आम है या तफसीर बिल आम है, यानी या तो यह तारीफ हकीकी है तो फिर इस सूरत में यह तारीफ बिल आम हुई, या यह तफसीर बयान कर रहे हैं और ये क्या हुई फिर तफसीर बिल आम हुई। बात समझ में आई क्या माना? इधर सुनो भाई, कहते हैं मुसन्निफ ने ऊपर ये कहा कि मबादिय तस्दीकिया किस चीज का नाम है? कुछ मुकदमात होते हैं, बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी, और उन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, उन पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं। याद रखो ये मौकूफ होना दो किस्म पर हो सकता है कि वो मौकूफुन आले उस शय से खारिज होगा या उसके अंदर दाखिल होगा, वो मौकूफुन आले उस शय से खारिज होगा या दाखिल होगा। मसलन मैं आपसे कहता हूं नमाज वुजू पर मौकूफ है, या मैं यूं कहता हूं नमाज कियाम रुकू और सजदे पर मौकूफ है। देखो मैंने कहा नमाज वुजू पर मौकूफ है, और वुजू क्या नमाज के अंदर दाखिल है या नमाज से खारिज है? नमाज से खारिज है, और वुजू है शर्त और नमाज है मशरूत। तो मौकूफ होना शर्त के लिए भी बोलते हैं, और शर्त शय शय से खारिज होती है, और मौकूफ होना जुज के लिए भी बोलते हैं। मैंने कहा नमाज मौकूफ है कियाम रुकू और सजदे पर, और कियाम रुकू और सजदा ये नमाज के अजजा हैं, ये नमाज के अंदर दाखिल हैं। तो मौकूफ का लफ्ज बोला जाता है किसके लिए? शर्त के लिए भी और अजजा के लिए भी, यूं कहें शर्त के लिए भी और जुज के लिए भी। और शर्त शय शय से खारिज होती है और जुज शय शय में दाखिल होता है। तो मुसन्निफ ने यहां यह बतनी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उन पर उस इलम के दलाइल की बुनियाद होती है, यानी उस पर उस इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं। क्या होते हैं? मौकूफ होते हैं। और मौकूफ होना तो दो किस्म पर हो सकता है, या तो वो उस शय के अंदर दाखिल होंगे या उससे खारिज होंगे। और इन्होंने बताया, अभी ऊपर बताया कि इनसे ये कजाया जो हैं, ये मुकदमात, इनसे उस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। तवज्जो है, मबादिय तस्दीकिया किस चीज का नाम है? कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो बदीही भी हो सकते हैं और नजरे भी, और उनसे उस इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। मालूम है वो इलम के अंदर दाखिल हैं, इलम के का जुज हैं, इलम का। लेकिन मुसन्निफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन पर इलम के दलाइल मौकूफ होते हैं, मौकूफ होना तो आम है, हो सकता है दाखिल हो सकता है दाखिल ना हो, दोनों सूरतें। और हकीकत में ये तस्दीकात, ये मुकदमात इलम के अंदर दाखिल होते हैं। तवज्जो है, तो ये है तो दाखिल, लेकिन मुसन्निफ ने लफ्ज कैसा जिक्र किया जिसमें दोनों इहतमाल थे, हो सकता है दाखिल हो सकता है दाखिल ना हो। इन्होंने मौकूफ होने को जिक्र कर दिया, तो ये मौकूफ होना तो दो किस्म पर हो सकता है, हो सकता है दाखिल हो सकता है दाखिल ना हो। तो इन्होंने ये जो तारीफ की मबादिय तस्दीकिया की, ये तारीफ बिल आम है, इन्होंने मौकूफ लफ्ज को जिक्र किया। और मुराद क्या है? मुराद जुज है, और हालांकि शर्त भी इसके लफ्ज में दाखिल हो रही है, तो यह तफसीर बिल आम हुई। यानी ऐसे लफ्जों से तारीफ करना जिसमें गैर भी क्या हो जाए, दाखिल हो जाए। मुझे जो मुकदमात हैं ये इलम के अंदर दाखिल होते हैं या दाखिल नहीं होते? दाखिल होते हैं, लेकिन लफ्ज क्या जिक्र किया? मौकूफ होना, और मौकूफ होने में शर्त भी इसके अंदर आ रही है, हालांकि शर्त शय तो शय से खारिज होती है। बात समझ में आ गई? क्या इश्काल हुआ कि मुसन्निफ ने यबतनी अलैहा कियासातुल इल्म जिक्र किया, और इब्तिना का क्या माना? मौकूफ होना। और मौकूफ होना दो किस्म पर है, जैसे कुल मौकूफ होता है किस पर? जुज पर। या जैसे मशरूत मौकूफ होता है किस पर? शर्त पर। तो ये दोनों को शामिल है। तो तारीफ कर रहे हैं उस मौकूफ की जो जुज है, और दाखिल जुज के साथ साथ और कौन हो गया? शर्त भी दाखिल हो गई। तो ये तारीफ बिल आम हुई, यानी ऐसी तारीफ जो आम है, मुआरिफ के अलावा और चीजें भी इसके अंदर दाखिल हो रही हैं। فقول المصنف رحمه الله يبتني عليها قياسات العلم، مصنف کا یہ جو قول ہے کہ يبتني عليها قياسات العلم، یہ تعریف او تفسیر بالاعم، یہ یا تو تعریف بالاعم ہے یا تفسیر بالاعم ہے۔ اگر آپ اس کو تعریف حقیقی شمار کریں تو یہ تعریف بالاعم ہوئی، اور اگر آپ اس کو تفسیر شمار کریں یعنی تعریف لفظی شمار کریں تو یہ تفسیر بالاعم۔ توجہ ہے، ये जो इन्होंने कहा ना यबतनी अलैहा कियासातुल इल्मी, यह तारीफ हकीकी भी हो सकती है और यह तारीफ लफ्जी भी, दोनों इहतमाल हैं। अगर आप इसको तारीफ हकीकी करार देते हैं तो यह तारीफ कैसी हुई, ये तारीफ बिल आम हुई, और अगर आप इसको तफसीर करार देते हैं यानी तारीफ लफ्जी करार देते हैं तो ये तफसीर क्या हुई, तफसीर बिल आम हुई। बात समझ में आ गई। वह अम्मा अलर राबी, और चौथी शिख पर यानी चौथी सूरत में, चौथी सूरत क्या थी कि जिन्होंने मौजू को इलम का जुज करार दिया, तो इससे क्या मुराद, या तो नफ्स मौजू या मौजू की तारीफ या मौजू के वजूद की तस्दीक या उसकी मौजूइयत की तस्दीक, उसकी मौजूइयत की तस्दीक वाला अगर चौथी शिक लें, चौथा इहतमाल लें, तो इस सूरत में यह तो किस में से है, मुकदमात शुरू के अंदर दाखिल है, यह तो इलम में ही दाखिल नहीं है, तो इसको जुज कैसे शुमार कर लिया। अब उसका जवाब देने लगे हैं, कहते हैं वह अम्मा अलर राबी, और चौथी शिक पर फयुकालू, तो यूं कहा जाएगा कि इन तस्दीक बिल मौजूइयती, कि तस्दीक बिल मौजूइयत, वो जो मौजू होने की तस्दीक है, लम्मा यतवक्कफु अलैहि शुरू अला बसीरतिन, कि जब उस पर मौकूफ है शुरू करना, अला बसीरतिन किस तरीके पर, बसीरत तरीके पर यानी पूरी समझ के साथ। तो चौथी शिक पर जवाब देंगे भाई, जवाब यह कि चूंकि ये तस्दीक भी मौजूइयत ही, ये अगरचे इस इलम के अंदर दाखिल नहीं, अगरचे उस इलम के अंदर दाखिल नहीं, लेकिन ये जान लेने से चूंकि तालिब इलम को बसीरत हासिल हो जाती है, तालिब इलम को बसीरत हासिल हो जाती है, और इसका चूंकि बड़ा दखल है जिसकी वजह से तालिब इलम जो है इलम के मबाहिस को जान लेता है, और यह जान लेता है कि कौन से मबाहिस इस इलम में से हैं और कौन से इस इलम में से नहीं है, तो चूंकि इसका बड़ा दखल है इलम के मबाहिस के जानने में, लिहाजा इसलिए इसको तसामुह करते हुए इलम का जुज करार दे दिया गया। मुसामहा यानी तसामुह करते हुए, चशमपोशी करते हुए इसको क्या करार दे दिया, इस इलम का जुज करार दे दिया। तवज्जो है, तस्दीक भी मौजूइयती ही जो है, इसको ये अगरचे इलम से खारिज है, लेकिन ये जान लेने के बाद, इस तस्दीक को जब कोई जान लेगा उसको पता चल जाएगा कि मसलन के इल्म नह का मौजू कलीमा या कलाम है, या जब उसको पता चल जाएगा कि इल्म मंतिक का मौजू मारिफ और हुज्जत है, तो उसको इल्म के मबाहिस की मारिफत हासिल हो जाएगी, और उसको पता चल जाएगा कि कौन से मबाहिस जो हैं वो इस इल्म में से हैं और कौन से मबाहिस इस इल्म में से नहीं है। तो चूंकि इस इल्म के मबाहिस का जानना, जानने में इसका बड़ा दखल है कि आपको पता चल जाए कि इस इलम का मौजू क्या चीज है, चूंकि इसका बड़ा दखल है इलम के मबाहिस को जानने में, इसलिए तसामुह करते हुए, चशमपोशी करते हुए इसको, इस तस्दीक को क्या करार दे दिया गया, तस्दीक भी मौजूइयत ही को उस इलम का जुज करार दे दिया गया, अगरचे उस इलम का जुज नहीं है। तो कहते हैं व अम्मा अला राबी फयुकालु, तो चौथी शिक जो है उस पर यूं कहा जाएगा कि इन तस्दीक बिल मौजूइयति लम्मा यतवक्कफु अलैहि शुरू अला बसीरतिन, के तस्दीक बिल मौजूइयत जब उस पर मौकूफ है बसीरत के तरीके पर शुरू करना, वकान लहू मजीद मदखल इन फी मारिफती मबाहिस इल्मी, और उसका ज्यादा दखल है इलम के मबाहिस के जानने में, व तमयीज है अम्मा लैस मिन्हू, और इन मबाहिस को जुदा करना उन मबाहिस से जो उसमें से नहीं है। तमयीज हाज अमीर मबाहिस को राजे करें, कि उन मबाहिस को जुदा करना, अम्मा उन चीजों से, लई समीन हो जो उस इलम में से नहीं है। तो कहते हैं फिर तर्जमा सुनो कि जब ये बसीरत के तरीके पर शुरू करना इस तस्दीक बिल मौजूइयत पर मौकूफ है, और नीज इसका ज्यादा दखल है इलम के मबाहिस के जानने में और उन मबाहिस को जुदा करने में उन चीजों से जो मबाहिस में से नहीं है, तो इस वजह से उद्द जुज अम मिनल इल्म मुसामहतन, तो इसको शुमार कर लिया गया इलम का जुज मुसामहतन, तसामुह करते हुए, वसअत से काम लेते हुए। वहादा अब अदुल मुहतमलाती, और ये एहतमालात में सबसे बईद एहतमाल है, ये इन एहतमालात में से सबसे बईद एहतमाल है। बाकी पहली तीन सूरतों में वो मौजू दाखिल तो हो रहा था इलम के अंदर, सवाल सिर्फ यह था इसको अलहदा जूस क्यों शुमार किया, और यहां पर तो यह सिरे से इलम के अंदर दाखिल ही नहीं है, तो यह उन एहतमालात में से सबसे बड़ी एहतमाल है। बात समझ में आ गई। कौलुहू व अजजा इहा, ऊपर मतन पर आइए भाई, मतन में क्या आया था, व अजजा इहा व आराज इहा, मैंने क्या बतलाया था, यह अजजा इहा और आराज इहा का आतफ किस पर है, अल मौजूआत पर, और उस पर क्या दाखिल है, हुदूद मुजाफ, तो इन सब पर भी हुदूद मुजाफ दाखिल है, यही बयान करेंगे। कहते हैं कौलुहू व अजजा इहा ए हुदूद अजजा इहा, यानी उस मौजू के अजजा की तारीफात, इजा कानतिल मौजूआत मुरक्कबतन, जब मौजूआत मुरक्कब हो, मौजू के अजजा उसी वक्त होंगे ना जब मौजू मुरक्कब हो, अगर मुरक्कब नहीं है तो उसके भी फिर अजजा भी नहीं होंगे। तो कहते हैं ऐ हुदूद अजजा इहा, मौजूआत के अजजा की तारीफात, इजा कानतिल मौजूआत मुरक्कबतन, जब मौजूआत जो है वो मुरक्कब हों। कौलुहू व आराज इहा ए हुदूदुल अवारिज़िल मुशब्बहती, मेरी किताब में मुशब्बहा है भाई, ये किताबत की गलती है, ए हुदूदुल अवारिज़िल मुसबताती लितिल्कल मौजूआती, हुदूदुल अवारिज़िल मुसबताती यानी उन अवारिज़ की तारीफ, अल मुसबताती लितिल्कल मौजूआती जो साबित किए गए हों उन मौजूआत के लिए, जो वो आवारिस, अरस क्या होता है, सिफत होती है ना, तो वो आवारिस अल मुसबतती लितिल्कल मौजूआती जो उन मौजूआत के लिए साबित किए गए हों। कौलुहू व मुकद्दिमातुन, ऊपर मतन में आइए, मतन में क्या आया था कि मबादी तस्दीकिया क्या है, व मुकद्दिमातुन, कुछ ऐसे मुकद्दिमात हैं, बय्यिनतुन औ माखूज़तुन, जो बदीही होंगे या नजरी होंगे, और यबतनी अलैहा कियासातुल इल्मी, उन पर बुनियाद होती है इलम के दलाइल की, यानी उनसे इलम के दलाइल मुरक्कब होते हैं। अब आइए शरा में, कौलुहू व मुकद्दिमातुन बय्यिनतुन, अल मबादी तस्दीकियतु इम्मा मुकद्दिमातुन बय्यिनतुन बि अनफुसिहा ऐ बदीहियतुन, कहते हैं मबादी तस्दीकिया या तो वो ऐसे मुकद्दिमात होंगे, बय्यिनतुन बि अनफुसिहा, जो अपनी जात के एतबार से ही वाज़े होंगे, भाई क्या माना, कहते हैं ऐ बदीहियतुन यानी बदीही होंगे, और मुकद्दिमातुन माखूज़तुन ऐ नजरियतुन, या ऐसे मुकद्दिमात होंगे जो अखज किए गए होंगे, ऐ नजरियतुन यानी नजरी होंगे, माखूज़तुन के नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ऐ मिनत दलीली, अखज किए गए होंगे किससे, दलील से, और दलील से जिसको अखज किया जाए उसको नजरी कहते हैं, तो नजरियत तो वह नजरी होंगे। फल उला तुसम्मा उलूमन मुतआरफन, इधर देखिए इन्होंने क्या बताया, मबादी तस्दीकिया कुछ ऐसे मुकद्दिमात हैं जो बदीही होंगे या नजरी होंगे, और इनसे इलम के दलाइल मुरक्कब होंगे, इनसे इलम के यानी यही मुकद्दिमात ये इलम के दलाइल बनेंगे, और इनके जरिए इलम के मसाइल को साबित किया जाएगा। तो ये दो किस्म के हो सकते हैं, बदीही भी और नजरी भी। बदीही होगा तो उसको तो हर एक मान लेगा कि हां बात ऐसी ही है, मैंने आपको बताया चार जुफ्त है तो आप फौरन मान लेंगे या नहीं, क्योंकि ये बदीही है भाई। तो इन मुकद्दिमात में से कुछ बदीही हैं और कुछ नजरी हैं। बदीही जो है उसको तो तालिब इल्म मान लेगा, उस्ताद जब पढ़ा रहा है इसको तो हर एक मान लेता है, इसलिए इनको उलूम मुतारफा कहते हैं। क्या कहते हैं, उलूम मुतारफा, मुतारफ माना मशहूर, यानी मशहूर उलूम है, यानी सब इसको मानते हैं, कोई इनका इनकार नहीं करता। बदीही का, बदीही को तो हर एक तस्लीम करता है, चाहे कोई बड़ा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई बच्चा हो, सब क्या करते हैं, बदीही को तस्लीम करते हैं। मुतारफ का माना मशहूर है, और तस्दीक इलम का नाम है ना, तस्दीक किसका नाम, वो आपका इदराक या तसव्वुर होगा या तस्दीक होगी, तो उलूम से मुराद हैं तस्दीकात, ये तस्दीकात मुतआरफ हैं यानी मशहूर हैं, सब इनको तस्लीम करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, अगर ये बदीही हो तो इनको उलूम मुतआरफा कहेंगे, उलूम मुतआरफा, तवज्जो है। और अगर ये नजरी हो भाई देखो ये बदीही, ये इनके जरिए हम इलम के मसाइल को साबित कर रहे हैं, तवज्जो है, हम क्या कर रहे हैं, इनके जरिए हम इलम के मसाइल को साबित कर रहे हैं, यानी ये दलील बन रहे हैं और आगे नतीजे में क्या आ रहे हैं, वो इलम के मसाइल, तो ये दलील बन रहे हैं, मबादी तस्दीकिया, तो ये बदीही होंगे या नजरी, जब दलील देते हुए बदीही आएंगे तो तालिब इलम उनको तो तस्लीम कर लेगा, वहां किसी शक और शुबे और इनकार की गुंजाइश नहीं, इसलिए इनको उलूम मुतारफा कहते हैं, क्या कहते हैं, उलूम मुतारफा। और अगर ये नजरी होंगे और इनके जरिए दलील देकर एक मसले को साबित किया जा रहा है, इनसे इस्तेदलाल किया जा रहा है, तवज्जो है, मुकदमात कैसे हैं, नजरी, और इनके जरिए क्या किया जा रहा है, इस्तेदलाल, और किसको साबित किया जा रहा है, इल्म के मसाइल को, तवज्जो है। तो अगर ये नजरी होंगे तो फिर दो सूरतें हैं, या तो तालिब इल्म उस्ताद के साथ हुस्ने ज़न रखते हुए कबूल कर लेगा कि जब मेरे उस्ताद ये मुझे बतला रहे हैं तो बात ऐसी ही है, चाहे उसकी समझ में पूरी तरह बात ना आए, तसल्ली ना भी हो, लेकिन उस्ताद के बारे में अच्छा एतकाद करते हुए वो क्या कर लेता है, उसको मान लेता है। भाई है नजरी, नजरी के लिए क्या चाहिए, दलील चाहिए, लेकिन दलील तो यहां जिक्र नहीं होगी, दलील तो हो सकता है ये किसी और इलम से मुकदमात लिए हो, वहां दलील थी, यहां दलील देने की जरूरत नहीं, अब ये खुद दलील बन रहे हैं, है नजरी और खुद क्या बन रहे हैं, दलील बन रहे हैं। जब इनको दलील बनाएंगे, या तो तालिब इलम उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान रखते हुए इनको तस्लीम कर लेगा, या तालिब इलम के जहन में कुछ शकूक व शुबहात होंगे, अगरचे मान तो लेगा लेकिन कुछ शकूक व शुबहात उसके जहन में आएंगे। दो मुकदमात में जिक्र करता हूं और उनके जरिए मैं क्या करता हूं, एक नतीजा निकालता हूं। भाई पहले ये मुकदमात जिनके जरिए आप नतीजा निकाल रहे हैं, इनको क्या होना चाहिए, पहले ये तो तस्लीम शुदा हो, उसके बाद ही क्या होगा, नतीजा भी तस्लीम करेंगे। तो लिहाजा जब ये मुकदमात आए, दलील बनाई, और ये दलील के मुकदमात किस किस्म के हैं, नजरी हैं, तो तालिब इलम या तो उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान रखते हुए क्या कर लेगा, इनको तस्लीम कर लेगा कि हां बात ऐसी ही है, कि जब मेरे उस्ताद ये मुझे बतला रहे हैं तो बात ऐसी ही है, और या तालिब इलम उसमें शक और इनकार को दखल देगा, शक और इनकार उसके दिल में आएगा कि भाई ये कैसे, ये पता नहीं है भी ऐसा या नहीं। तो अगर तालिब इलम उसको उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान करते हुए कबूल कर ले तो उनको उसूल मौजूआ कहते हैं। तालिब इलम उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान रखते हुए कि मेरे उस्ताद कह रहे हैं, बात मान लेता है कि हां इसी तरह है बात, तो इनको क्या कहेंगे, उसूल मौजूआ। और अगर तालिब इलम जो है शक और इनकार उसके जहन में आता है तो इनको मुसादरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसादरा, स्वाद के साथ है मुसादरा, और जमा है मुसादरात, भाई मुसादरात, तो इनको मुसादरात कहते हैं। तवज्जो है, वो नजरी मुकदमात के जरिए क्या किया जा रहा है, इस्तेदलाल किया जा रहा है, दलील बनाकर क्या किया जा रहा है, मसाइल को साबित किया जा रहा है। अगर तालिब इलम उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान करते हुए इन नजरी मुकदमात को वैसे ही तस्लीम कर लेता है कि मेरे उस्ताद कह रहे हैं तो मालूम हुआ बात ऐसी ही होगी, तो इनको क्या कहेंगे, उसूले मौजूआ। और अगर तालिब इलम जो है शक और इनकार को दखल देता है, कोई थोड़ा सा एतराज वगैरह करता है, या उसके दिल में एतराज और इनकार वगैरह आता है, तो इनको मुसादरात कहते हैं। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ एक ही मुकदमा मुख्तलिफ तलबा के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है, एक तालिब इलम हो सकता है उस्ताद के एतबार से उसको कबूल कर ले तो उसी को उसूल मौजूआ कहेंगे, और दूसरे तालिब इलम के जहन में हो सकता है शक व शुबा और इनकार आए, या वो एतराज भी करे कि यहां मेरे जहन में यह इश्काल आ रहा है, पूरी तरह मुतमईन नहीं होता, तो उसी को फिर क्या कहेंगे, मुसादरा। मालूम हुआ एक ही मुकदमा एक तालिब इलम की तरफ नजर करते हुए असल मौजू हो सकता है और दूसरे की तरफ नजर करते हुए मुसादरा हो सकता है। उसूल मौजूआ, उसूल असल की जमा है, और मौजूआ मुकर्ररा मुतअय्यना, उस्ताद ने जिक्र किया, तालिब इलम ने भी क्या कर लिया, उसको मान लिया, तो ये क्या है, उसूल मौजूआ है, मुकर्ररा उसूल है। और दूसरे में तालिब इलम क्या कर रहा है, शक और इनकार को दखल दे रहा है, तो उसको मुसादरा कहेंगे, मुसादरा। या तो इस वजह से उन्होंने लिखा है क्योंकि चूंकि इससे आगे मसाइल निकल रहे हैं, ये दलील है ना, और दलील से क्या साबित होते हैं, मसाइल, तो इनसे चूंकि मसाइल निकलते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं, मुसादरा। और या लुगत के एतबार से देखा जाए तो सादरा युसादिर, मुसादरा के माने इसरार करना, किसी चीज पर क्या करना, इसरार करना, यानी तालिब इलम का तो इश्काल है जहन में लेकिन उस्ताद के इसरार की वजह से उसको एक बात को मानना पड़ा, तो ये माना यहां ज्यादा मुनासिब बनता है। एक असले मौजू है जिसमें तालिब इलम क्या कर लेता है, मान लेता है, और दूसरे में शक और इनकार उसके जहन में आता है, अगरचे मान लेता है लेकिन उसके जहन में क्या है, शक और इनकार है, तो वो क्या है, मुसादरा। और यहां पर शक और इनकार है जिस वक्त इनसे इस्तिदलाल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हां जब इनकी तहकीक करेगा, पीछे अपने मकाम पर जाकर इसको देखेगा, तो वहां देखेगा कि ये क्या है, सही है, दलाइल से साबित है, वहां उस पर वो बात वाजे हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त इस्तेदलाल किया जा रहा है, उस्ताद जिक्र कर रहा है और उसके जरिए एक मसला साबित कर रहा है, उस वक्त उसके जहन में क्या रहा है, इश्काल आ रहा है। अगरचे अपने मकाम पर जाकर वो इश्काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब पीछे उसकी तहकीक करेगा, उसको देखेगा। भाई सादरा का यह माना नहीं कि वह गलत होंगे, माना यह है कि तालिब इलम उसको बगैर शक और इनकार के कबूल करे तो वह उसूल मौजूआ, और शक और इनकार के साथ कबूल करे तो वह मुसादरा है। लेकिन शक और इनकार इस्तिदलाल के वक्त है, हर वक्त नहीं है। बाद में जाकर जब वक्त आएगा और तहकीक करेगा और देखेगा कि यह किस इलम में कैसे साबित किया गया है, या इसकी अपनी कहीं दलील आ जाएगी, तो फिर उस पर वह बात वाजे हो जाएगी कि यहां शक और इनकार की जरूरत नहीं है, इश्काल उसके खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ वो जो मुकद्दमात हैं कितनी किस्म के होंगे, जो मबादी तस्दीकिया हैं, या वो बदीही होंगे या नजरी। बदीही हो तो उनको क्या कहते हैं, उलूम मुतारफा, उनको क्या कहते हैं, उलूम मुतारफा। और अगर वो नजरी हो और तालिब इल्म उस्ताद के बारे में अच्छा गुमान करते हुए उनको कबूल कर ले तो उनको क्या कहेंगे, उसूल मौजूआ। और अगर तालिब इल्म शक और इनकार को दखल दे तो उसको क्या कहेंगे, मुसादरा। फल उला तुसम्मा उलूमन मुतारफन, भाई मेरी किताब में है उलूमन मुतारफन, यह होना चाहिए उलूमन मुतारफतन। उलूम चूंकि जमा है, जमा की सिफत या तो जमा लाई जाती है या वाहिद मुअन्नस, और मुतारफ ये तो मुफरद है भाई, तो उलूम जमा और मुतारफ मुफरद, ये इसकी सिफत नहीं बन सकता। तो उलूमन मुतारफतन यहां गोलता होनी चाहिए। तो फल उला तुसम्मा उलूमन मुतारफतन, तो पहले जो हैं यानी वो मुकद्दमात बदीहिया जो हैं उनको उलूम मुतारफा कहते हैं, उलूम मुतारफा, क्योंकि इलम तस्दीक इलम का नाम है। आपका इदराक दो किस्म पर है, या तसव्वुर होगा या तस्दीक, भाई तो इदराक इलम का नाम है। तो मालूम हुआ तस्दीक और तसव्वुर ये भी किसका नाम है, इलम का नाम है। और ये तस्दीकात हैं, बदीही तस्दीकात हैं, तो इनको उलूम कहेंगे। इलम की जमा क्या, उलूम, और मुतारफ यानी मशहूर है, यानी सब इनको मानते हैं क्योंकि बदीही है भाई। तो इन तस्दीकात को, ये जो बदीही होती हैं, ये जो मुकद्दमात बदीही होते हैं, इनको तुसम्मा उलूमन मुतारफतन, इनको उलूमे मुतारफा कहते हैं। वस्सानियतु, और दूसरी किस्म जो है, इन अज़अन अल मुतअल्लिमु, अज़अन युज़अनु, इज़अन का क्या माना, मान लेना, एतिकाद कर लेना। इन अज़अन अल मुतअल्लिमु बिहुस्नि ज़न्निही बिल मुअल्लिमि, अगर उसको मान लेता है पढ़ने वाला उस्ताद के बारे में, मुअल्लिम के बारे में अच्छा गुमान करते हुए, सुम्मियत उसूलन मौज़ूअतन, तो उनको उसूल मौज़ूआ कहते हैं, यानी मुकर्ररा उसूल। व इन अखदहा मास्तिनकार इन सुम्मियत मुसादरतन, और अगर मुतअल्लिम यानी तालिब इल्म उसको ले लेता है मास्तिनकार इन नापसंदीदगी के साथ, इस्तिनकार का माना है नापसंदीदा होना भाई, यानी उसके जहन में शक और इनकार है तो नापसंदीदगी के साथ वो ले लेता है। तो कहते हैं वह इन अखदहा मास्तिनकार इन सुम्मियत मुसादरतन, और अगर वो उसको नापसंदीदगी के साथ ले लेता है तो इसको मुसादरा कहते हैं। मुराद वही है, यानी इनकार के साथ ले लेता है, दिल में शक है, शुबा है, एतराज है, और फिर भी ले लिया तो इसको मुसादरा कहते हैं। वमिन हा हुना युअलमु, और यहां से यह बात मालूम हो गई कि अन्नल मुकद्दमत अल वाहिदत यजूजु अन तकून असलम मौजूअन बिन्निस्बति इला शख्सिन मुसादरतन बिलकियास इला आखरा। और यहां से यह बात मालूम हो गई कि एक ही मुकद्दमा जायज है, यानी मुमकिन है कि वो असले मौजू हो बिन्निस्बति इला शख्सिन, एक शख्स की तरफ निस्बत करते हुए, और मुसादरतन बिलकियास इला आखरा, और वही मुकद्दमा मुसादरा हो दूसरे की तरफ कियास करते हुए। एक ही मुकद्दमा एक तालिब इल्म की तरफ नजर करते हुए उसूल मौजूआ में से हो सकता है और दूसरे के नजदीक मुसादरा में से हो सकता है। तो ये जो मुकद्दमात हैं ये बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी। बदीही हो तो इनको क्या कहते हैं, उलूम मुतआरफा, और अगर ये नजरी हो और तालिब इल्म इनको मान ले उस्ताद के साथ हुस्न ज़न रखते हुए तो इनको कहते हैं उसूल मौजूआ, और अगर वो शक और इनकार को दखल दे तो उसका नाम मुसादरा है। वजह समझ में आ गई, इनके वजह तस्मिया कि जो बदीही होते हैं उनको उलूम मुतआरफा क्यों कहते हैं, क्योंकि मुतआरफ का माना है मशहूर, तो ये मशहूर उलूम है, सब मानते हैं, बदीही चीज है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, उलूम मुतआरफा, जो बदीही मुकद्दमात होते हैं। और जो नजरी हैं उनको उसूल मौजूआ कहते हैं या मुसादरा। उसूल मौजूआ, मौजूआ का माना मुकर्ररा, तयशुदा, तयशुदा यानी वो उसूल हैं जो तयशुदा हैं, मुकर्ररा हैं, उस्ताद जैसे बयान कर रहा है, तालिब इल्म ने भी कोई एतराज नहीं किया, मान लिया, तो ये गोया तयशुदा उसूल हैं, ये तयशुदा ये मुकर्ररा उसूल हैं, इसलिए इनको उसूल मौजूआ कहते हैं। और मुसादरा, मुसादरा या तो ये सदरा यसदुरु से है, सदरा यसदुरु का माना एक चीज का सादिर होना, निकलना, या इसी तरह या ये सदरा युसद्दिरु का माना भी किसी चीज का निकलना। तो चूंकि इन उसूलों से आगे ये दलील बनते हैं, आगे इनसे मसाइल साबित होते हैं, मसाइल निकलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मुसादरा, कि इनसे आगे मसाइल निकलते हैं, नताइज हासिल होते हैं। या मुसादरा का मैंने बताया कि मुसादरा युसादिरु के माने हैं इसरार करना, इनको उस मुसादरा इसलिए कहते हैं क्योंकि तालिब इल्म जो है उस्ताद के इसरार की वजह से इनको मान लेता है, उसकी खुद पूरी वहां पर तसल्ली नहीं होती, अगरचे बाद में दूसरे मकाम पर जाकर इसकी पूरी वजाहत हो जाती है और फिर वो शक और इनकार उसका खत्म हो जाता है, लेकिन वक्त इस्तेदलाल चूंकि उसके दिल में शक और इनकार है और उस्ताद के इसरार की वजह से उसको मानने पड़े ये, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मुसादरा कहते हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।